प्रभु के बुलाए हुए प्यारे भाई और बहनों यहाँ पंजाब में परमेश्वर के बड़े कृपा से दोबारा तुम्हारे बीच में आने का परमेश्वर अनुमति दी गई है। ये मौका के लिए पहला मैं पिता परमेश्वर को प्रभु यीशु के जरिए से लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं। साथ में जहाँ से मैं आ रहा हूँ मतलब दक्षिण भारत, वहाँ से सारे भाई और बहनों का प्रेम और मोहब्बत आप सबके बीच में मैं पहला बांटना है, क्योंकि आपके बारे में वहाँ बताया गया है और लोगों को बहुत खुशी एहसास हुआ आप लोगों के बारे में सुन के, आपके तस्वीर देख के, और बताया कि जाते वक्त ज़रूर हमारा प्यार बता देना। तो यही मैं मेरे को फर्ज बनता है पहला ये करने के लिए। आगे बढ़ते हुए परमेश्वर की कृपा से अभी हम 27वां विषय में आ चुके हैं। 27वां विषय का जो नाम है 24 बुजुर्ग। अब ये तो प्रकाशित वाक्य की बात है, तो प्रकाशित वाक्य जब कभी हम लेते हैं बहुत लोगों को डर भी आता है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य एक आम साधारण किताब नहीं है। फिर भी आज परमेश्वर की कृपा से प्रकाशित वाक्य के अंदर हम घुस के हम बहुत सारे आश्चर्यमन रोशनी देखने वाला है। आज तो हम देखेंगे ये 24 बुजुर्गों के बारे में। ये 24 बुजुर्गों के बारे में हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 4:4, प्रकाशित वाक्य 4:4।
चार
में हम पढ़ते हैं वहाँ वो एक सिंहासन के चारों तरफ बैठा हुआ था, 24 सिंहासनों के ऊपर 24 बुजुर्ग, और इन 24 बुजुर्ग के कपड़े सफेद थे और उन 24 बुजुर्गों के सर के ऊपर 24 मुकुट पहना हुआ था,
सोने का
मुकुट पहना हुआ था। तो ये क्या मतलब है? तो ये 24 बुजुर्ग कौन है, क्यों ये सिंहासन के चारों तरफ बैठते रहते हैं, क्या ये हम सीधे भाषा में ले सकते हैं, क्या ये लोग हमेशा उसी स्थिति में रहते हैं, बैठे रहते हैं? अगर ये सोचा जाए तो परमेश्वर के बारे में भी हम सोचना है कि क्या परमेश्वर हमेशा एक सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ होता है, हमेशा हिलता नहीं है, उठता नहीं है, कहीं जाता नहीं है। तो हम जानता है ये सब नामुमकिन है, ये सब हम ऐसी तरीके से नहीं समझाना है, ये सब हमको बड़ी बड़ी आत्मिक बातों को समझने के लिए चिन्ह परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। तो एक सिंहासन हमेशा का मतलब है अधिकार। तो परमेश्वर सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ मतलब है, बैठने का मतलब है लंबे समय का गुजारिश, और सिंहासन का मतलब है अधिकार। तो परमेश्वर का अधिकार चलते आ रहा है कंटिन्यूस होते आ रहा है। तो ये स्थिति में यहाँ हम देखता है ये 24 बुजुर्ग। पता नहीं आप इससे पहले 24 बुजुर्ग के बारे में क्या मतलब सुन लिया होगा, बहुत सारे मतलब बता रहा है।
24 बुजुर्ग के बारे में हमने ये सुना था कि दूसरे इतिहास में 24 मतलब चैप्टर में दिया गया था कि उसमें भी 24 बुजुर्ग चुने गए हरेक गोत्र से ताकि वो तंबू की सेवा करें
जी।
तो हम सोचते थे कि जब ये खत्म हो गया हो सकता है यही 24 बुजुर्ग वहाँ पर है,
क्योंकि 24 पैरे थे, आधा एक 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 साल में 15-15 दिन याजक काम कर रहे थे अंदर मंदिर में, तो वो इस पैरे थे। जैसे ये बपतिस्मा योहन्ना का बाप भी ऐसा काम कर रहा था, योहन्ना वही जकरिया कर रहा था। तो थोड़े लोग वो 24 देख के सोच रहा था शायद वो हो जाए, थोड़े और सोचता है याकूब का 12 बेटा, इसराइल के 12 झुंड, और प्रभु यीशु के 12 चेले, तो 12 मिले तो 24 हो जाता है। तो थोड़े तो सोचता है इन 24 उधर पर स्वर्ग में बैठते ही रहते हैं, वहाँ परमेश्वर के मौजूदगी मौजूदगी में थोड़े वैसा सब सोचते हैं, लेकिन हम तो परमेश्वर की कृपा से अभी परमेश्वर के वचन को समझने के सही तरीके मिल चुके हैं, सही मार्ग और जैसा आपने बोला सही नींव भी मिल गया है। तो हम तो जरूर ये बात हमारे को असली नहीं लगता है, सच्चाई नहीं लगता है। और सबसे पहले जब हम प्रकाशित वाक्य का कोई पढ़ाई करें, हमको याद रखना है वो पहला वचन, क्योंकि वो पहला वचन में ही बताया है कि प्रकाश ये कैसे कैसे शब्दों हैं। तो वचन में पढ़ लेंगे प्रकाशित वाक्य पहला पहला, हिंदी में वो शब्द आ गया या नहीं मैं देखता हूँ, लेकिन अंग्रेजी में सिग्निफाइड करके एक नाम एक एक शब्द आता है, ही सेंट एंड सिग्निफाइड इट अनटू जॉन।
यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उस परमेश्वर ने दिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है बता दिखाए, और उसने स्वर्गदूत अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसे उसके द्वारा अपने दास योना को
बताया सिर्फ लेकिन अंग्रेजी में चिन्ह के द्वारा बताया ऐसा आता है, ही सेंट एंड सिग्निफाइड इट अनटू जॉन। तो आप पंजाबी में तो वो चिन्ह कब नहीं आया ना
योहन्ना को बताया
बताया तो अंग्रेजी में किंग जेम्स बाइबल KJV में यानी सेंट एंड signified it by his angel unto his servant John. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जो अनुवाद करने वाले छोड़ दिया है। signified, signified मतलब चिन्ह, signs. He spoke through symbol. ये बहुत ही जरूरी बात, अगर ये बात हटाता है तो हम सबसे बड़ा रहस्य हमसे निकाला जाता। तो ये बात तो हम देखता है कि ये प्रकाशित वाक्य एक चिन्ह के भरे हुए किताब, बहुत सारे चिन्ह परमेश्वर वहां इस्तेमाल करके बड़े बड़े आत्मिक बातों को हमारे को बता रहा है। तो ये बात अगर हम समझ जाए ठीक तरीके समझ लेते हैं, हम पहला हमारा ध्यान में रखना है कि प्रकाशित वाक्य एक चिन्ह के द्वारा दिया हुआ परमेश्वर का संदेशा। तो ये ऐसा संदेशा नहीं है जैसा हम सीधे तरीके से समझ जाए और सीधे भाषा और सरल भाषा समझ जाए, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसा बात समझते हुए हम तो वाकई हमने ये चौथा अध्याय पढ़ चुके हैं, आप तो याद होगा पिता परमेश्वर के बारे में और पिता परमेश्वर के चार स्वभाव गुण के बारे में पढ़ते हुए हमने यही चौथा अध्याय में और छठा और सातवां वचन हमने पढ़ लिया, जहां हम मालूम हुआ कि वो सिंहासन के चारों ओर चार क्या बोला जीवी
जंतु
चार जंतु था, और वो ऐसे जंतु था जिन जिनके शरीर आंखों से भरे हुए थे, हर तरफ आंखों थे, और ये चार जंतु इधर उधर एक तो सिंहासन के बीच में भी थे और सिंहासन के चारों ओर में भी थे। इसका मतलब क्या है कि सिंहासन पर पिता परमेश्वर सिंहासन के ऊपर भी थे कि मतलब क्या है पिता परमेश्वर के अंदर था, और सिंहासन के चारों ओर का मतलब है पिता परमेश्वर के सारे सृष्टि में, क्योंकि पिता परमेश्वर का अधिकार ये चारों ओर का मतलब है उनका अधिकार, उनके सारे अधिकार, उनके सारे जो 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 हम कहता है यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, इनके सारे ब्रह्मांड में अलग किस्म के जो सृष्टियां सृष्टि की, और उन सारे सृष्टियों में परमेश्वर के अंदर जो है वो उनके अंदर हिसाब में डाल दिया गया है। जैसे जैसे मनुष्य के बारे में हम पढ़ता है कि परमेश्वर उनके प्रतिरूप में बना चुका है, तो इसका मतलब है परमेश्वर के अंदर जो कुछ है वो मनुष्य के अंदर डाल चुका। तो इसका मतलब हमने जान लिया वो चार जो जंतु उसी अभी अध्याय से अभी हम देख रहे हैं ये 24 बुजुर्ग, और ये 24 बुजुर्ग वही सिंहासन के चारों ओर है। इसका मतलब है ये 24 बुजुर्ग, पहली बात हम समझनी है ये 24 बुजुर्ग वो सिंहासन के संबंधित है, वो सिंहासन के संबंधित है, इसलिए कि चार सिंहासन के चारों तरफ बैठा हुआ है, और वो सिंहासन पिता परमेश्वर है। तो ये 24 बुजुर्ग पिता परमेश्वर का कुछ संबंधित बात होना चाहिए। और आप इसके बाद भी मैं ये भी बताऊंगा आपकी हमारा पिता परमेश्वर जो अनदेखी पिता परमेश्वर जो मनुष्य ना देख सकता ना कभी देख पाएगा, ऐसा पिता परमेश्वर के बारे में हम समझने के लिए ये पूरे बाइबल में ये प्रकाशित वाक्य का चौथा अध्याय सिर्फ परमेश्वर के बारे में बताने के लिए रखा हुआ है, लेकिन सब चिन्ह के भाषा में बताया गया है। तो यहाँ 24 बुजुर्ग भी पिता परमेश्वर के बारे में कुछ होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हमने देखा चार जंतु का मतलब था पिता परमेश्वर के अंदर है चार स्वभाव गुण, तो उसी तरह अभी ये चौथे बुजुर्ग जो पिता परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर है, इसका मतलब पिता परमेश्वर का कुछ बात होना चाहिए। दूसरे बात, बुजुर्ग बोला, बुजुर्ग बुजुर्ग का शब्द हम याद में रखना, ये चिन्ह, ये कोई असली बात असली शब्द नहीं है, मतलब हम ये कोई लिटरल तो लेने वाला नहीं है। तो बुजुर्ग जब बोला, बुजुर्ग का मतलब क्या है? नहीं, बुजुर्ग का मतलब है लंबे उम्र, वेरी ओल्ड। शुरुआत बहुत पहला था, पैदा बहुत पहला था, इसके मतलब है एल्डर्स। एल्डर्स को किसको बोलता है? जिसका उम्र ज्यादा है। उम्र ज्यादा का मतलब क्या है? जिनका शुरुआत बहुत पहला हुआ। तो उसी तरीके से ये बुजुर्ग का मतलब है कोई चीज जो परमेश्वर के संबंधित है, जिसका शुरुआत बहुत बहुत पहला था, बहुत बहुत पहला था। तो अभी ये कौन सा चीज जो परमेश्वर के संबंधित है, जो बहुत पहला का शुरुआत हुआ, ये कौन सा चीज है जो ये 24 बुजुर्ग हो सकते हैं? अभी हम आपको बताएंगे ये क्या है, वचन के द्वारा से आपको बताएंगे। प्रेरितों के काम 3:21 प्रेरितों के काम 3:21
जरूर है जो उस वर्ग में जा रहे जिन्ना चेर सारियां चीजा दे सुधारे जान दा समान आवे जिन्ना दे विखे परमेश्वर ने अपने पवित्र नवियां दी जवानी मुड्ड हुई आख्या सी।
हिंदी में पढ़े तो हम कुछ समझ लेंगे, क्योंकि कभी कभी पूरा का पूरा पंजाबी तो नहीं समझ सकते।
अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से ही की है जो जगत की उत्पत्ति से होते आए,
जो जगत के उत्पत्ति से होके आ रहा है, ये है बुजुर्ग। और परमेश्वर अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुंह से प्रकट कर रहा है, इसके मतलब है ये जो 24 बुजुर्ग है ये है परमेश्वर का खास भविष्यवाणी, भविष्यवाणियों 24 है का मतलब है 24 खास भविष्यवाणियों। और ये 24 खास भविष्यवाणियों जो है ये कुछ खास बात के बारे में, क्योंकि परमेश्वर तो बहुत कुछ भविष्यवाणी बताता है, ऐसा नहीं कि हम गिन गिन के सिर्फ 24 है, 24 से भी बहुत बढ़कर है, लेकिन ये 24 बहुत खास है और खास विषय के ऊपर है, और वो खास विषय है परमेश्वर का योजना के मुताबिक। परमेश्वर की योजना कहाँ जाके कर जाएगा, जहां सारा दुनिया समझ जाएंगे परमेश्वर क्या करके आए हैं, वो है परमेश्वर का राज्य। जब परमेश्वर का राज्य इधर स्थापित हो जाता है ना इस दुनिया पर, लोग समझ लेंगे हमारे को एक परमेश्वर है। अभी हलचल है, अभी ये बोलता वो बोलता, ये बोलता वो बोलता, ये चलता वो चलता, लेकिन वो समय जब आ जाता है ना, कोई हलचल नहीं होगा, साफ तो बहुत साफ तरीके से मालूम हो जाएगा हमारा बनाने वाला एक है और वो इसराइल का बनाने वाला है, तर्म हो जाएगा। तो परमेश्वर के राज्य में ये सारा परमेश्वर का जो योजना पूरा क्या बोलता है क्लाइमैक्स को जाएंगे करके हम देखते हैं। तो ये जो बुजुर्ग है परमेश्वर के शब्दों, परमेश्वर के शब्दों, परमेश्वर के भविष्यवाणी शब्दों, और ये भविष्यवाणी शब्दों परमेश्वर किसके मुंह के जरिए से बोला, ये परमेश्वर ने भविष्यताओं के मुंह के जरिए से बोला। लेकिन वो शब्दों जब वो भविष्यताओं बोला ना, वहां शुरू नहीं हुआ वो शब्दों, वो जगत उत्पत्ति से पहले परमेश्वर के दिमाग में शुरू हुआ। जो परमेश्वर दिमाग में वहां शुरू होके उचित समय में उचित भविष्यताओं के मुंह के जरिए से वो बात बतलाया और जैसा जैसा लिखा के आया। तो ऐसी बात है ये 24 बुजुर्ग। अभी हम देखेंगे ये 24 बुजुर्ग परमेश्वर के बोले हुए भविष्यवाणी शब्दों और कैसे 24 है, 24 मतलब बहुत खास है ये 24 भविष्यवाणी। अभी ये सब क्या है मालूम, ये क्यों परमेश्वर ये खास ये 24 भविष्यवाणी बता रहा है, ये एक तरीके का एक घंटी है। हम पूछते हैं ना हमेशा, कोई चीज खरीदने को जाते हैं, हम पूछते हैं यार इसको क्या गारंटी देंगे, इसमें कोई वारंटी है? इसका मतलब क्या है, अगर मैं ले लेते हैं, मैं कैसे विश्वास करूं कि ये चलेगा? मैं तुमको गारंटी देता हूं, 5 साल का गारंटी देता हूं, 3 साल का गारंटी देता हूं, उसमें थोड़ा विश्वास आके हम क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। उसी तरीके से पिता परमेश्वर ने इतना बड़ा सुसमाचार देके ये हलचल भरे बुराई भरे हुए ये दुनिया के बीच में बता रहा है हमारे को कि उनके अधिकार इस दुनिया में आने वाला है, बता रहा है कि सारे मरे हुए जी उठेंगे, बता रहा है कि सारे बातों के लिए न्याय होने वाला है और सभी का फैसला होने वाला है। ये सब हम कैसे विश्वास करें? इसका गारंटी किधर है? 24 कैरेट गारंटी दे रहा है, दे ले 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 ले, ये ले ले, ये है हमारा गारंटी है, ये तो जरूर होने वाला है। परमेश्वर किया है 24 बुजुर्गों और 24 बुजुर्गों का गारंटी परमेश्वर दे रहा है कि सचमुच जो कोई बात परमेश्वर बता गया है शुरुआत से अपने योजना के बारे में और खास करके अपने राज्य के बारे में, वो जरूर जरूर तो सच होने वाला है, जरूर। अभी आप सोच रहे होंगे, चलो तुमने बोला ये 24 बुजुर्ग है परमेश्वर के शब्दों, परमेश्वर के भविष्यवाणियों, लेकिन परमेश्वर की भविष्यवाणी कैसे सिंहासन बैठ सकता है, परमेश्वर की भविष्यवाणी कैसे सफेद कपड़ा पहन सकता है, परमेश्वर की भविष्यवाणी के सर के ऊपर सोने का मुकुट कैसा हो सकता है? अच्छी एक सवाल है, अभी वो बात हम देख लेंगे और स्थापित करेंगे कि क्या हमने जो मतलब दिया है ये सही मतलब या नहीं, क्योंकि ये जमना है। अभी जो बात है ना वहां उसके जमना है, अभी वो बात बताता है कि ये 24 बुजुर्गों उस सिंहासन के चारों ओर बैठे हुए थे, 24 सिंहासनों के ऊपर। सिंहासन जैसे मैंने अभी आपको बताया, सिंहासन का मतलब क्या है? सिंहासन ऐसा नहीं है कोई कुर्सी, जो सोने का कुर्सी या कोई हीरों का भरे हुए कुर्सी, वो तो सिंहासन दुनिया में है, लेकिन सचमुच सिंहासन जो परमेश्वर के वचन में देखते हैं वो अधिकार का चिन्ह है। तो ये शब्द अधिकार भरे हुए शब्दों हैं, ये पिता परमेश्वर के बोले हुए शब्दों हैं, जो ऐसे वैसे शब्द नहीं है, परमेश्वर के दिव्य अधिकार के साथ बोले हुए वचनों, इसलिए सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है। ये पहले बात तो हम देख रहे हैं। दूसरे बात हम देखेंगे, और वो आपको जानता है ना पिता परमेश्वर के बारे में चिन्ह है, पिता परमेश्वर सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 5 और 13। हाँ वही पढ़ लो।
फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुन्द्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है ये कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद आदर।
देखो
और
परमेश्वर के बारे में बोला सिंहासन में बैठे हैं, इसका मतलब है सर्वशक्तिमान, जैसे हम प्रार्थना करते हैं सर्व अधिकार को जिसके पास है वो पिता परमेश्वर के पास है। अभी दूसरे बात देखता है, ये 24 बुजुर्ग सफेद कपड़े पहना हुआ है, सफेद कपड़े, कपड़े जो चीज है क्या करता है, ढकता है, कवर करता है। और दूसरे बात सफेद, सफेद का मतलब है प्योर, मतलब पवित्र, पवित्र। तो इसका मतलब है ये शब्दों परमेश्वर का पवित्र शब्दों है, ये शब्दों जब परमेश्वर बोलते हैं ये पवित्र माना जाना है, पवित्र माना जाना है, जो ऐसे वैसी बातों नहीं है, ये खुद पिता परमेश्वर अपने जुबान से, अपने भविष्यताओं के जुबान के जरिए से बोला हुआ है, जो परमेश्वर करने वाला है, मैं ये करूंगा करके परमेश्वर बोल रहा है, ये पवित्र बातों हैं, क्योंकि खुद परमेश्वर ही बोला गया है, इसलिए सफेद कपड़ा पहना हुआ है यहाँ हम देख रहे हैं। तीसरा बात हम देखता है बैठा हुआ, बैठा हुआ का मतलब आपने जानता है ना बाइबल में, जब जैसे हम भी इस्तेमाल करते हैं, अगर हम आ जाते हैं अंकल बिजी हो जाता है बोले कि बैठो, बैठा का मतलब क्या है, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, तो बैठने का मतलब है थोड़ा इंतजार करो। उसी तरीके से ये 24 जो बुजुर्ग और ये 24 जो भविष्यवाणी अभी तक पूरा नहीं हुआ, इंतजारी में है पूरा होने के लिए, फुलफिल होने के लिए इंतजारी में है, तो इसलिए बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, तो अभी तक उसको पूरा नहीं हुआ तो हम देख रहे हैं। और दूसरी बात हम देखता है ये इन 24 बुजुर्गों के सर के ऊपर सोने का मुकुट, ये सोने का मुकुट भी एक 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 बड़ा चीज है। सोने का मुकुट सिर्फ दो लोग पहनता है, एक तो राजा और दूसरा है जोकर। जोकर भी लगाता है, हंसते हैं सब लोग, टक लगाता है, डरते हैं सब लोग। तो ये मुकुट का मतलब है राजा का कोई चिन्ह, है ना। तो उसी तरीके से हम देखता है ये जो सोने का मुकुट पहना हुआ है, ये जो 24 बुजुर्ग, इसका मतलब है ये 24 भविष्यवाणियों को है का के पास है महिमा। महिमा
ताज का मतलब
महिमा, महिमा। तो ये वचन में अगर आप देखा जाए, ये 24 बुजुर्ग जब उठ जाते हैं अपने मुकुट लेके किधर डालते हैं, वो सिंहासन के सामने डालते हैं। इसका मतलब क्या है, जब वो सच्चा हो रहा होता है ना, वो सारा महिमा किसके पास जाना है, पिता परमेश्वर को जाना है।
जब पूरे
हो जाता है तो ये है मुकुट का मतलब है महिमा। और ये एक 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 भविष्य के पास महिमा है, और ये महिमा किसको जाना है, पिता परमेश्वर को जाना है। एक और जगह में देखेंगे ये मेमने के सामने भी रखते हैं, इसका मतलब है ये महिमा पिता परमेश्वर को जाता है, साथ में किसको भी, किसके पास भी जाना है, प्रभु यीशु को, क्योंकि प्रभु पिता परमेश्वर के सारा योजना पिता से है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। तो जरूर अगले महिमा जाना है प्रभु यीशु को। तो ये बात तो यहाँ देखते हैं। तो ये जैसा जैसा एक मुकुट एक राजा का महिमा है, उसी तरीके से हम देखते हैं ये 24 बुजुर्गों के पास जो 24 सोने का मुकुट। सोने का मतलब है दिव्य, दिव्य, क्योंकि सोना बाइबल में दिव्य होता है। तो ये दिव्य महिमा है, और ये दिव्य महिमा किसके पास जाएंगे, पिता परमेश्वर के पास जाएंगे, और बाद में पुत्र के पास भी जाएंगे। तो ये इतने सारे बातों, इतने सारे गहरे बातों यहाँ चिन्ह के बादशाह, चिन्ह के द्वारा बताया गया है। एक और बात हम आखिरी में छोड़ गया है कि ये 24 जो सिंहासनों, ये वो एक सिंहासन चारों तरफ है, राउंड अबाउट। तो राउंड अबाउट का मतलब क्या है, उसको में कुछ मतलब होना चाहिए ना। उसके मतलब क्या है कि जहां भी परमेश्वर का देखा जाए तो याद आ जाता है। इसका मतलब है ये 24 जो भविष्यवाणियों है, 24 जो परमेश्वर का कसम दिया द्वारा शब्दों, परमेश्वर कभी भूलता नहीं, हमेशा परमेश्वर के याद में है, इसलिए उसके सिंहासन के चारों तरफ बैठा हुआ है। जहां भी देखे दिखता है, दिखता है, दिखता है, दिखता है, दिखता है, हमेशा दिखता है। इसका मतलब है क्या, याद में रखता है। अगर अगर हम कभी शक करता है, क्या परमेश्वर आपने भूल गया, परमेश्वर कभी नहीं भूलता है, हम तो भूलते हैं लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता है। लेकिन फिर भी तुम लोग पूछ रहे ना, चलो मैं दूध देता हूँ, मेरा गारंटी, मैं नहीं भूलता हूँ मेरे बेटों, मैं नहीं भूलता हूँ। तो यही परमेश्वर, देखो परमेश्वर इतना बड़ा परमेश्वर, हमारे हमारे लेवल को उतर के बात करते हैं और बता रहा है मैं नहीं भूलता हूँ, मैं नहीं भूलता हूँ। तो ये है ये 24 बुजुर्ग का मतलब, 24 परमेश्वर के भविष्यवाणियों, भविष्यवाणी शब्दों। अभी हम परिचय होंगे इन 24 खास भविष्यवाणियों से। एक एक भविष्यवाणी, जैसे आपको याद है, परमेश्वर उचित समय में उचित भविष्यता के मुंह से प्रकट किया। पहला भविष्यता कौन था, पहला भविष्यवाणी कौन सा था, परमेश्वर जब परमेश्वर की योजना इस मनुष्य जाति के बीच में, पहला परमेश्वर का भविष्यता कौन था, वो पहला दुनिया में एक बंदा जिसका नाम है हनूक। हनूक पहला परमेश्वर चुन लिया उनका सेवा करने के लिए, और उस हनूक के मुंह से निकला पहला भविष्यता। लेकिन कितना आश्चर्यमंद भविष्यता भविष्यवाणी था, और वो भविष्यवाणी वो पहला दुनिया की बात नहीं, दूसरा दुनिया की बात नहीं, दूसरा दुनिया के अंत अर्थात आज जो हम रहने वाले ये समय, इस समय के बारे में हनुक उस वक्त बोल रहा है। ये वचन हम पढ़ लेंगे अभी, यहूदा किताब 14:15 वचन। ये है पहला बुजुर्ग जो हनुक के मुंह से, बुजुर्ग इन हनुक तुम बुजुर्ग नहीं है, भविष्यवाणी तो बुजुर्ग है और सिर्फ हनोक के मुंह परमेश्वर ने इस्तेमाल किया।
और हनोक ने भी जो आदम से सातवीं पीढ़ी में था इनके विषय में यह भविष्यवाणी की कि प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही थी दोषी ठहराए।
तो हिंदी में दिया है दोषी ठहराए। पंजाबी पढ़ने को सही, आप पढ़ लो।
ਨਾਲੇ ਹਨੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਤੋਂ ਸੱਤਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲਿਖੇ ਅਗਮ ਵਾਪ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਈ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਸੰਤਾਂ ਸਣੇ ਆਇਆ ਕਈ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਕਟ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ने। हाँ, पंजाबी में लाखा बोला, हिंदी में
प्रभु अपने लाखों पवित्रों के
तो लाखों ये दोनों अनुवाद करने वाले कैसे हजार से लाख कैसे कूदा मालूम नहीं, लेकिन हम तो देखना है कि हजारों जब हम परमेश्वर के वचन अनुवाद करते हैं हम शब्द नहीं बदलना। जब वचन बोलता है हजारों, तुम कौन होता है उसको मैं बदलने के लिए? तुम कौन है? देखो ऐसा कर लिया, ये बहुत ही बड़ा भूल। ये हजारों क्यों हजारों? सिर्फ 144 हजारों, 144 हजार है ना, इसका मतलब है 144 हजारों, इसलिए हजारों संतों के साथ। लेकिन अगर आप लाखों डाला तो इसका मतलब एक ही लाख है, इधर 1.44 है, इसको लाखों बोल सकता है? बोल नहीं सकता है। तो ये हजारों है, ये सब चीज पर ये जो अनुवाद की बात है ना, हमारे मनुष्य लोग करते हैं, इसलिए हम बहुत ध्यान देना है जो शब्द हम दोहराते हैं। ये परमेश्वर के बात है और हम गलत तरीके से हम नहीं बोलना चाहिए।
अंग्रेज लोग लाख नहीं समझते ना, वो तो मिलियन।
बिल्कुल, अंग्रेजी तो लाख तो नहीं समझता। हम तो अफ्रीका जब जाते हैं ना, वहाँ अगर हम लाख बोलते तो वो लोग हैरान से बोलेंगे क्या बोला ये यार ने, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ तीन 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 ये शून्य हजार मिलियन तीन तीन जो शून्य है हजार, छह शून्य है मिलियन, नौ शून्य है बिलियन आता है, लेकिन हम तो लाख और करोड़ लाता है, ये तो हिसाब नहीं है बाहर में। तो यहाँ तो ये पहला बात आप देखना है, ये तो लाखों नहीं, ये हजारों, और ये 144,000 परमेश्वर के पुत्र के दुल्हन के बारे में बताया गया है। देखो ये पहला भविष्यवाणी बताता है हनोक के जरिए से, हमारा समय के बारे में बता रहा है, जब प्रभु के दूसरे आगमन में प्रभु खुद आएगा अपने संतों के साथ, मतलब संतों को का महिमा हो चुके होंगे, और संतों के साथ आएंगे किस लिए? लोगों को अपने भक्तिहीन कामों और भक्तिहीन शब्दों और भक्तिहीन चाल चलन के बारे में दोषी ठहराए। का मतलब है ये नहीं है कि तुम ये किया, ऐसा नहीं है, तुम क्यों किया, ऐसा मतलब आना चाहिए। इंग्लिश में टू कन्विंस टू कन्विक्ट, कि ये एक ऐसा नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। तो ये मतलब यहाँ आता है, ये परमेश्वर का न्याय का मतलब है। जैसा में भी हम पढ़ता है परमेश्वर का न्याय कैसा होगा, एक तो तलवार के जरिए से, एक तो आग के जरिए से। ये तो यशाया में 66 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 15 वचन पढ़ लो, यशाया 66:15। क्योंकि ये कन्विंसिंग का मतलब क्या है, परमेश्वर ये न्याय करने के कारण 66:15 वहां दिया गया है कि कैसे न्याय के दिन में 66 का 15
आपके साथ आएगा और उसके रथ भुवंडर के समान होंगे।
वो तो तलवार और अपने आग के साथ आएगा। तलवार का मतलब परमेश्वर का वचन बाइबल और आग का मतलब परमेश्वर का न्याय। तो परमेश्वर न्याय के दिन में जब वो न्याय लाता है वो अपने सच्चाई लाएगा लोग के सामने प्रकट करने के लिए। जैसे हम देखेंगे न्याय के दिन के बारे में 30वां अध्याय 30वां क्लास में 3 कटनी में आप देखेंगे और भी कोई जानकारी उसके बारे में। तो ये न्याय के दिन का मकसद परमेश्वर का मकसद क्या है कि मनुष्य अपने कर्मों के बारे में सोचा जाए और मन फिराए और मन फिराने में अपने आप बदलें, टू बी रिपेंट एंड टू ट्रांसफॉर्म, यही है परमेश्वर का मकसद है। तो यही है न्याय का मकसद भी है। तो ये वर्ड है कन्विंस, कन्विंस है और ये कन्विंस का वर्ड यहाँ हिंदी में दोषी ठहराए। तो थोड़ा बहुत है और जैसा दबाने की जैसे है तुम दोषी है, ऐसा नहीं, परमेश्वर ऐसा बोलने वाला नहीं है। तो ये तो पहला बात, तो ये पहला भविष्यवाणी जो पहला बुजुर्ग यहूद में यहूदा से हमने पढ़ लिया है। अभी चलो हम मिल लेंगे दूसरा बुजुर्ग, मतलब परमेश्वर का दूसरा खास भविष्यवाणी परमेश्वर के दिव्य योजना के बारे में, जिन्हें परमेश्वर ने दूसरा भविष्यता के मुंह के जरिए से बताया। और परमेश्वर का दूसरा भविष्यता जो परमेश्वर ने इस्तेमाल किया वो है याकूब, और याकूब के में प्रकट किया ये भविष्यवाणी उत्पत्ति 39:10 शीलो के बारे में, 49:10 मतलब शीलो के बारे में 49:10।
जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे।
राज्य के लोग सारा दुनिया उसके अधीन होंगे। शीलो, शीलो का मतलब क्या है? शांति का राजकुमार, शांति का राजकुमार। तो ये दूसरा जो हम देख रहे हैं खास भविष्यवाणी बोलते हैं और बताते हैं प्रभु यीशु के राज्य के बारे में, प्रभु यीशु के अधिकार के बारे में। और सबसे पहले बात बताता है कि सिर्फ प्रभु यीशु इस दुनिया में शांति ला सकता है, सिर्फ प्रभु यीशु इस दुनिया में शांति ला सकता है। शांति का मतलब है मालूम, इस दुनिया में अगर हम सोचा जाए एक एक देश में, एक एक नगर में, एक एक गांव में, एक के बाद समस्या ही हो रहा है। घर घर में झगड़ा हो रहा है, नगर नगर में झगड़ा हो रहा है, देश देश में समस्याओं भरा भरा हुआ है। ये सारे समस्याओं का हल कौन लाएगा? ये सारा झगड़ाओं को कौन ठीक कराएगा? सिर्फ एक मनुष्य तो जो प्रयत्न कर रहा है, लेकिन मनुष्य का प्रयत्न सब असफल होंगे। बड़े बड़े नेताओं बैठ के दुनिया के शांति के बारे में बैठता है, सिर्फ बैठता है, उठता है, लेकिन हल नहीं मिल रहा है। जो हल निकालता है वो हल बराबर हल नहीं रहता है। तो सही हल और सही बंदा कौन है जो सचमुच सारा दुनिया का समस्या उठा सकता है? वो सिर्फ हमारा प्रभु यीशु। इसलिए उसका नाम है शीलो, मतलब शांति का राजकुमार। ये एक और जगह में पढ़ते हैं ये बात, जी यश जी, यशायाह 14:7 यशायाह 14:7
अब सारी पृथ्वी को विश्राम मिला है, वे चैन से हैं, लोग ऊंचे स्वर से गा उठे।
ये क्या मतलब है? ये इस वचन में कौन से सबसे महत्वपूर्ण शब्द है? सारे। अगर आप के सोचे जाए कि ये दुनिया कितना बड़ा है, कितने देश है, कितने नगर है, कितने जाति है, कितने झुंड है, कितने कुल है, और सारे के सारे समय अगर आप सोचे जाए, ये वचन बोलते हैं हर एक खत्म हो जाएगा, सारे पृथ्वी शांति में। हम लोग गाते हैं कभी कभी कब गाते हैं? जब दिल में शांति है, जब खुश होता है ना, तब गाते हैं हम। देखते हैं कभी कभी लोग तो अपने नहाने के समय में गाते हैं कब गाते हैं? 30 दिन में तीन दिन चार दिन जब मिलता है खुशी से होता है, सारे तो हम चुकाएंगे, ये चीज वो चीज खरीद लेंगे, हा हा हो 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 हा हा, ऐसा रहेगा। लेकिन कितने दिन? दो दिन, तीन दिन, ज्यादातर चार दिन। उसके बाद खामोशी खामोश है। क्यों? क्योंकि वो खुशी सदा नहीं हो सकता अभी। लेकिन यहाँ वो पढ़ते हैं कि सारा दुनिया, सारे लोग, सारे जाति गाना गाएंगे। क्यों? सचमुच उनके दिल में शांति है, खुशी है। कितने सुंदर तरीके से, अपने समझने के तरीके से परमेश्वर हमको बताया कि वो दिन आएगा जब शिलो अपने काम खत्म करेंगे, जब सारा दुनिया में शांति पैदा होएगा। ये परमेश्वर का वचन है। ये दूसरा जो हम पढ़ा है, दूसरा जो भविष्यवाणी, दूसरा बुजुर्ग, क्योंकि परमेश्वर अपने बेटे के जरिए से इस दुनिया से सारा का सारा जो बुराई और सारे के सारे जो जो कहता है धार्मिकता के विरुद्ध सारे जो काम जो हो रहा है सभी हटाएगा, सभी हटाएगा और इस दुनिया में धार्मिकता लाएगा, राइटियसनेस, राइटियसनेस जो सही कर्म, सही बात, सही मार्ग इस दुनिया में परमेश्वर लाएगा। और जब सही आ जाता है और नकली निकल जाता है तो शांति, सदा शांति आएगा, भी समस्या कुछ भी झगड़ा नहीं होएगा। तो ये दूसरा बुजुर्ग, अभी तीसरा बुजुर्ग को मिलेंगे। तीसरा बुजुर्ग फिर का तीसरा बोले हुए परमेश्वर का भविष्यवाणी, भविष्यता के मुंह से, कौन से भविष्यता? तीसरा भविष्यता था मूसा, मूसा, मूसा के मुंह से हम पढ़ेंगे ड्यूट्रॉनमी, मतलब व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण 18वां अध्याय 15वां वचन और 18 और 19।
तेरा परमेश्वर, पिता परमेश्वर तेरे से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे सामान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना।
18 और 19।
सो मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा और जो मनुष्य वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा तो मैं उसका हिसाब उसे लूंगा।
देखिए मैं बहुत गहरे रूप से इन वचनों के अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ, अगर जाए तो ये घंटे घंटे का क्लास हो जाएगा। मैं तो सिर्फ एक परिचय दे रहा हूँ। यस यस यस, याद में रख लो क्योंकि इसमें बहुत गहरापन है, बहुत गहरापन है। सिर्फ बता रहा हूँ, ये तीसरा भविष्यवाणी है परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ, तीसरा भविष्यवाणी जो मूसा के मुंह से निकला, जो एक भविष्य बोला है एक नबी के बारे में। नबी है ना, नबी, नबी
मतलब
नबी, नबी, नबी। अब ये नबी को रख के ही हमारा मुसलमान धर्म हम देख रहा है, क्योंकि जब जब प्रभु आया और प्रभु आने से पहले जब यूहन्ना आया, पूछा सवाल उनसे क्या है, क्या तुम वो नबी है, क्या तुम वो आने वाला नबी है? यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ता है, यूहन्ना बोला मैं नहीं हूँ। उसके बाद जी क्या तुम वो नबी,
वही नबी हो जिसके हम इंतजार कर रहे हैं?
नहीं 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 बोला। उसके बाद शैतान ने बोला मैं दिखाऊंगा तुम वो नबी, वो है, इसका नाम है मोहम्मद। और वो नबी ने किताब लाया और सारे का सारे ये सच्चाई का एक डुप्लीकेट, काउंटरफिट, नकल, नकल लाया। लेकिन यहाँ गौर से देखा जाए तो मूसा बोलता है मेरे सम्मान का नबी। मेरे सम्मान का मतलब है दो चीज जो में था, और वो है पहला बात, मूसा एक मध्यस्थ बना,
बिचवाई
बना, इसराइल और परमेश्वर के बीच एक बिचौला जो इसराइल को बचाने के लिए खड़ा था,
मीडिएटर का था
जी। और दूसरा इसराइल का बचाने वाला, मतलब डिलीवरर, एक तो बिचौनी और तो बचाने वाला। क्या मूसा, अच्छा सॉरी, क्या मोहम्मद है? मोहम्मद ऐसा था, बिचवाई बना, बचाने वाला तो बोलने की नहीं है, हम जानते हैं ये बात ऐसे है ही नहीं। लेकिन मूसा बोला मेरे समान तेरे परमेश्वर तेरे बीच में से,
तेरे
भाइयों के बीच में से
एक नबी
उत्पन्न करेगा, एक नबी उत्पन्न करेगा। असली नबी कौन है? वो है प्रभु यीशु मात्र नहीं है, प्रभु यीशु यीशु मात्र प्रभु यीशु के साथ साथ प्रभु यीशु का शरीर 146 सब मसीह मिलके मसीह द क्राइस्ट मसीह जी मसीह है वो नबी जो भाइयों तुम्हारा भाइयों के बीच में से, मतलब जो दुनिया के बीच में से हर एक झुंड हर एक कुल हर एक भाषा। आप सोच रहे होंगे हम पंजाब में आके हम अमृतसर नहीं गया, लुधियाना नहीं गया, हम कौन से जगह दूसरा है हम नहीं गया उधर, इतने से सारे शहर गया क्यों? इधर हम जलंधर में इस छत के ऊपर बैठ रहा है और सिर्फ दो लोगों को बता रहा है, ये क्या बात है? ये चुनाव है, ये दिव्य चुनाव है। परमेश्वर अपने नजरों से देखता है, हम खुद आपका जान पहचान नहीं है। हम आपको ढूंढ के नहीं आया, हम नहीं बोल सकते कि हमने अंकल ढूंढ के आया और हमने अंकल को शिक्षा दिया। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर ढूंढा, परमेश्वर चुना और परमेश्वर अपने सेवक भेजा, जाओ उधर काम करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात तो लिखता है कि ये जो नबी जो मूसा ने अपने मुंह से बताया ये है मसीह, क्योंकि मसीह वो काम करने वाला है, क्योंकि मसीह है वो बिछौनी जो हम पढ़ेंगे पहला तिमोथियस दूसरा अध्याय पांचवा वचन, पहला तिमोथियस दूसरा अध्याय पांचवा वचन।
क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिछवाई अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है।
देखो बिछवाई बिछवाई है प्रभु यीशु और दूसरा है बचाने वाला। जैसे जैसे मूसा ने इसराइल को एगिप्त के क्या बोलता है गुलामी एगिप्त के गुलामी से छुड़ाया, उसी तरह इस नबी मूसा से भी अधिक सारा दुनिया अपने पाप और मौत के गुलामी से बचाएंगे। अभी सारे लोग पाप और मौत की गुलामी में है, फंसे हुए हैं, इस मसीह पूरे तरीके से बचेंगे करके हम देखते हैं। तो इस तरीके से ये नबी मूसा की जैसा होगा लेकिन मूसा से भी बढ़कर। तो ये है तीसरा भविष्यवाणी, तीसरा परमेश्वर का दिया हुआ वचन। अभी चौथा परमेश्वर का दिया हुआ शब्द और भविष्यवाणी शब्द जो भविष्यता नाथान के मुंह से प्रकट हुआ, जी नाथान के मुंह से प्रकट हुआ, दूसरा सामुएल सातवां अध्याय तेरवा वचन, दूसरा सामुएल सातवां अध्याय तेरवा वचन।
मेरे नाम का घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा।
ये वचन परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के वाणी, परमेश्वर की बोली, लेकिन प्रकट हुआ किसके मुंह से? नाथान के मुंह से। और ये बताता है परमेश्वर बोलता है इधर अपने घर के बारे में, ये परमेश्वर अपने घर के बारे में यहाँ बताते वक्त, इसके बाद दाऊद इस बात को सोचा क्यों हम परमेश्वर को क्यों नहीं, हम घर क्यों नहीं बनाते? तो उसको बहुत कोशिश किया सारे जिंदगी परमेश्वर के लिए घर बनाने के लिए, परमेश्वर अनुमति नहीं दिया, बोला तुम सामान सब इस्तेमाल बंदोबस्त कर लो लेकिन तुम्हारा हाथ खून से भरे हुए हैं, मैं तुमको अनुमति नहीं दूंगा ये पवित्र मंदिर बनाने के लिए, ये तुम्हारा बेटा को मैं मौका दूंगा। उसके बाद सुलेमान ने मंदिर बनाया, लेकिन क्या ये वचन वो मंदिर के बारे में बोल रहा था? नहीं, ये वचन बोल रहा है पत्थरों का मंदिर, जीवित हुए पत्थरों के मंदिर के बारे में बता रहा है, जिन्होंने पौलुस पत्रस ने हमारे को बताया, जो पहला पत्रस दूसरा अध्याय पांचवा वचन, पहला पत्र दो पांच, दो का पांच।
तुम
पहला पत्र दो का पांच,
तुम भी आप जीवते पत्थरों के की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो।
तो ये घर के बारे में ये वचन बोल रहा था, ये है सदा के लिए रहेंगे, ये कभी टूटने वाला नहीं है। जो पत्थरों से बनाया मंदिर 3 बार टूटा, लेकिन ये तो टूटने वाला नहीं है। तो ये मंदिर जो हम देख रहे हैं ये है सदा समय रहेंगे। ये मंदिर के बारे में नातान के मुंह से परमेश्वर ने बताया, इस मंदिर जीवते हुए से बनाएंगे, और जीवते हुए पत्रों कौन है, वो है कलीसिया, जो हम पढ़ेंगे 1 तिमोथियस 3:15 दो बार टूटा वो मंदिर, जो पत्रों से बनाया वो मंदिर दो बार टूटा,
तीसरी बार फिर बनना
है। बनने की ख्वाहिश है, बनने की ख्वाहिश है, क्या परमेश्वर वो छोड़ेंगे अलग बात है।
कि यदि मेरे आने में हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा है और नेव है, उसमें कैसे बर्ताव करना चाहिए।
देखा, तो ये है वो जो मंदिर, जो कलीसिया है, जो जीवते परमेश्वर का नींव है। तो इस मंदिर और इस घर के बारे में यहाँ परमेश्वर बोल रहे हैं, यहाँ देख रहा है। और वो ना सिर्फ उस मंदिर में राजगद्दी भी होगा, और वो राजगद्दी का राज्य का अधिकार हमेशा हमेशा के लिए होगा। तो ये मसीह के बारे में प्रभु पिता परमेश्वर यहाँ भविष्यवाणी किया। तो चौथा भविष्यवाणी देखा, अभी पांचवा भविष्यवाणी देखेंगे। ये पांचवा भविष्यवाणी भविष्यता अय्यूब के मुंह से परमेश्वर ने प्रकट किया। ये पांचवा भविष्यवाणी परमेश्वर के शब्दों जो परमेश्वर ने अय्यूब के मुंह से प्रकट किया, जो हम पढ़ेंगे अय्यूब 19:25-26।
हाँ जी
अय्यूब 19:25-26।
मुझे तो निश्चय है कि मेरे छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा।
मेरे छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में वो पृथ्वी पे खड़े होंगे,
और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा।
तो ये भी मैंने जैसे आपको बोला, ये सारे वचनों को बहुत गहरे रूप में मैं नहीं जा सकता हूँ अभी, अगर जाए तो हम क्लास खत्म नहीं करेंगे। तो ये भी एक आश्चर्यमंद परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर के शब्दों हैं, जो बताता है हमारा चुड़ाने वाले के बारे में, जो बताता है कि आखिरी दिन में वो पृथ्वी में खड़ेगा। खड़ेगा का मतलब क्या है? अपने राज्य शुरू करेगा। बैठने का मतलब क्या है? इंतजारी है। जैसे जैसे पिता परमेश्वर ने प्रभु को क्या बोला, तुम हमारे बाएं ओर में बैठो। बैठो का मतलब क्या है? पहला तो परमेश्वर प्रभु को किधर जगह दिया? अपने राजगद्दी में। अपने राजगद्दी में जब जगह दिया, इसका मतलब उसी वक्त प्रभु यीशु राजा बन गया, लेकिन उसका राज्य का अधिकार वहां शुरू नहीं हुआ। उसका राज्य का अधिकार शुरू होने के लिए बैठो बोला। बैठो का मतलब क्या है? इंतजार करो, जो उचित समय रखा है उस समय में आपका राज्य का अधिकार आप शुरू करो। उसके बाद हम पढ़ते हैं, मैं मरा, मेरा जो शरीर भी गांठ हुआ, लेकिन फिर भी मैं जीवित होंगे, फिर भी मैं अपने आंखों से परमेश्वर को देखेंगे, दर्शन करेंगे। इसका मतलब है, ये है पुनर्तान, पुनर्तान का बड़ा बड़ा सच्चाई। ये पुनर्तान का सच्चाई आजकल बोलता ही नहीं लोग, खुशी एहसास भी नहीं हो रहा लगता है, भूल गया शायद, ये सब बाइबल का बकवास, हम नहीं मान सकते है यार, कहां देखा है कोई किसी का पुनर्तान, हम ये सब नहीं बात करते हैं, इसलिए सब भूल गया है, सभी छोड़ दिया ये बात, बाकी सब बात करेंगे, अभी हम जीवित रहे, हम जीवित रहने की बात करेंगे, मरने के बाद देख लेंगे बाद में। तो आजकल महत्व नहीं दे रहा है इस बात के, लेकिन वचन में हम क्या पढ़ते हैं, वचन में पढ़ लो, ये बहुत ही आश्चर्यमंद सच्चाई है। ये यूहन्ना 5:28 वचन, शायद मनुष्य को ये बात को समझ नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, सह नहीं पा रहा है, इसलिए प्रभु क्या देख रहा है, देखो क्या इस्तेमाल कर रहा है इस वचन में, 5:28
इससे अचंबा मत करो।
ये अचंबा वाले बात भैया, ये कोई साधारण बात नहीं है, इससे अचंबा मत हो जाओ। ये अचंबा की बात ही है जरूर, लेकिन अचंबा मत हो जाओ, क्यों बताओ?
क्योंकि वह समय आता है,
वह समय आता है, इसका मतलब वो समय अभी तक आया नहीं है, वह समय आता है जब
कि जितने कब्रों में हैं,
जितने, ये बात भी आप लिटरल मत ले लो, कब्रों में हैं, हमारा हिंदू भाइयों सभी जला के राख हो गया है, हमारे बहुत सारे दुनिया वाले समुद्र में मर गए हैं, हमारे कल्पना चावला जो पंजाब की थी वो ऐसी क्या बोला आसमान में हवा में चला गया,
हवा में
चला गया, तो उसका कोई पुनर्तन नहीं है क्या? सिर्फ कब्र में रहा कुमार पुनर्तन होगा? नहीं, इसका मतलब कब्र का मतलब क्या है? मरे हुए स्थिति, जितने सारे जो मर गए हैं जो कब्रे में हैं, मतलब कब्र का मतलब क्या है? कब्र एक मौत का एक चिन्ह है। तुम्हारा बाप किधर है? मेरा बाप
मर गया,
मेरा बाप तुम कब्र में है, तुम्हारा माँ कब्र में है, कब्र का मतलब क्या है? उधर ढूंढ के वहां मिलेंगे, इसका मतलब है मर गया है, मरे हुए स्थिति में है। तो जितने सारे कब्रों में हैं, पढ़ लो ब्रदर आगे,
उसका शब्द सुनकर निकलेंगे
जी, निकलेंगे निकलेंगे निकलेंगे, जैसे जैसे मैंने बोला बहुत गहरे बातों, ज्यादा अंदर नहीं जा सकता हूँ, दो दो मिनट, दो दो मिनट, तीन तीन मिनट ही बोल के आगे बढ़ना है, नहीं तो ये क्लास खत्म नहीं होंगी। तो ये बड़ा सच्चाई है, अचंबा वाला सच्चाई है, पुनर्तान का, पुनर्तान का, सारे लोग वापस जी उठेंगे, सारे लोग अपने अपने स्थान में, अपने अपने कान में, अपने अपने शहर में, अपने अपने गांव में वापस जी उठेंगे। कितना खुशी होंगे वो दिन, कितने खुशी होंगे वो दिन जब सभी लोग वापस लौट के, थोड़े लोगों के लिए कुछ हैरान भी होगा क्योंकि बहुत लोग दुश्मनी में भी मर गया, एक दूसरे को भी मार डाला, एक दूसरे को मार डालने के बाद वापस सामने सामने खड़े हो गए तो कितना कितना स्थिति होगा जरा सोच लो, तुमने मेरे को मार डाला हा? तो वो सब भी होने वाला है। तो ये पुनर्तान का दिन परमेश्वर ने स्थापित किया है, तो ये वचन बताता है, ये बताता है, ये पांचवा बुजुर्ग है जो हमने पढ़ा है, अभी पांचवा भविष्यवाणी जो परमेश्वर अय्यूब के मुंह से प्रकट किया, अभी छठा भविष्यवाणी, छठा बुजुर्ग परमेश्वर के वचन जो परमेश्वर ने अपने उचित भविष्यता उस समय दाऊद भविष्यता के मुंह से प्रकट किया, दाऊद भविष्यता के मुंह से प्रकट हुआ भविष्यवाणी, भजन संहिता 30:5 भजन संहिता 30:5
क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रशंसा जीवन भर की होती है,
तो ये
रात का रोना पड़े परंतु सबेर अनंत पहुंचेगा।
यह है पांचवा वचन, तीसरा भजन संहिता 30:30 भजन संहिता पांचवा वचन जहां हम पढ़ते हैं दाऊद के मुंह से निकला हुआ बात, और ये निकला हुआ बात परमेश्वर की बात है जो परमेश्वर के दिव्य योजना के बारे में बता रहा है, बताता है परमेश्वर के क्रोध के बारे में, बताता है उस क्रोध का जो नतीजा थोड़े समय के लिए होंगे लेकिन परमेश्वर के प्रशंसा हमेशा हमेशा रहेंगे, और ये क्रोध का समय है रात, और वो हमेशा हमेशा जो परमेश्वर आशीर्वाद करने वाला है वो तो है सुबह। तो हम देखते हैं परमेश्वर का अद्भुत योजना, एक रात अभी हो रहा है जहां तो रो रहे हैं, और इस रात में तो सिर्फ दुख है, कमी है, पीड़ा है, हर किस्म का जो क्या बोलूं, आप जानते हैं जिसके वजह से हम तो खुशी के बदले से हम रोने को मन आता है। तो इस दुनिया में अभी रोने का स्थिति है, लेकिन वचन बोलता है एक सुबह आने वाला है, सुबह का मतलब क्या है, जब ये अंधकार हटा दिया जाएगा और रोशनी आ जाएगा, जो वो सुबह में सभी तो क्या हो जाएगा, संतोष से भरेंगे। पढ़ लो वो जो आखिरी बात, वो तीसरा पांच, तीसवां पांच
भजन
संहिता तीसवां पांच, वो आखिरी शब्द क्या है? हाँ जयकार, मतलब बिल्कुल बिल्कुल संतुष्टता, मतलब वो संतुष्टता आ जाता है क्योंकि इतना सब हमको मिलेंगे, इतना सब हमारे को हो रहा है, हमने कभी सोचा भी नहीं। तो ये परमेश्वर के योजना में होने वाला है, वो समय है, वो समय परमेश्वर में बार बार लिख चुका है, वचन में पढ़ लो उस समय के बारे में। मत्ती 19वां अध्याय 28वां वचन, मत्ती 19:28,
यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा का के सिंहासन पर
बैठेगा, नई उत्पत्ति से द रीड्रेशन, सारे के सारे दुनिया, सारे के सारे मनुष्य जाति, सारे के सारे चीजों, नई उत्पत्ति होने वाला है, नई उत्पत्ति, यह है परमेश्वर का योजना है, नई उत्पत्ति, द रीजनरेशन। प्रेरितों के काम 3:21 बोलता है द रेस्टिट्यूशन ऑफ ऑल थिंग्स, प्रेरितों के काम 3:21,
सब चीजों के सुधार का समय। अवश्य कि वह स्वर्ग से उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले।
देखो, सब बातों का सुधार ना कर ले,
इसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र विशेषताओं के मुख से की।
तो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है सब चीजों का सुधार, सब चीजों का सुधार होने वाला, रेस्टिट्यूशन ऑफ ऑल थिंग्स। अभी ये बात हम प्रकाशित वाक्य में भी एक दृश्य देखते हैं, प्रभु यीशु अपने सिंहासन में अपने हाथ में बैठ रहा है और बोलता है, मैं सब चीज को नया कर रहा हूँ, करने वाला नहीं, कर लिया नहीं, कर रहा हूँ। इसका मतलब है इसको एक टाइम चाहिए इस काम को करने के लिए, इसको 1000 साल चाहिए। प्रकाशित वाक्य 21:5,
और जो सिंहासन पर बैठा है उससे कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है।
जी, लिख ले, ये वचन विश्वास के योग्य और सच्चे हैं। तो ये छठा भविष्यवाणी, छठा बुजुर्ग, बहुत भारी है ना एक एक बुजुर्ग, कितना सब हम बोल सकते हैं ना एक एक बुजुर्ग के बारे में। हम तो बहुत छोटे छोटे समय में बता रहा है इन बुजुर्ग के बारे में,
जान
मीट ब्रदर अजय बस, लेकिन ब्रदर अजय के सारे हिस्ट्री तो हम बता नहीं सकता ना, तो उसी तरीके से ये बुजुर्ग का आपको सिर्फ टेक कर रहे हैं। तो ये छठा बुजुर्ग और छठा भविष्यवाणी परमेश्वर का, जो दाऊद के मुंह से निकला, जो परमेश्वर की योजना के बारे में दिया बोला गया है। अभी हम आगे बढ़ेंगे और सातवां बुजुर्ग से मिलेंगे, सातवां बुजुर्ग, सातवां परमेश्वर के बोले हुए वचनों, और ये भविष्यवाणी वचनों परमेश्वर ने उचित समय में अपने उचित भविष्यता, मतलब सुलेमान के मुंह से ये प्रकट किया, और सुलेमान के मुंह प्रकट किया हुआ वचन है नीति वचन 8:22-30। नीति वचन 8:22-30।
पिता परमेश्वर ने मुझे काम करने के आरंभ में वर्ण अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वर्ण आदि से ही पृथ्वी की सृष्टि के पहले से ही ठहराई गई हूँ, जब ना तो गहरा सागर था और ना जल के सोते थे, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ियां स्थिर ना की गई थी, जब पिता परमेश्वर ने ना तो पृथ्वी और ना मैदान ना जगत की धूली के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई। जब उसने आकाश को स्थिर किया, मैं वहां थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया, जब उसने आकाश मंडल के ऊपर से स्थिर किया और सागर के सोते फूटने लगे, जब उसने समुद्र का सिवाना ठहराया कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके, और जब वह पृथ्वी की नेव की डोरी लगाता है, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी
तब मैं कारीगर सी उसके पास थी
और प्रतिदिन मैं उसकी प्रशंसा थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी।
तो ये बोलते हैं कोई ज्ञान के बारे में, जो 12वां वचन पढ़ लो उसी अध्याय में, 12 कौन से, कौन बात कर रहा है इधर? मैं ज्ञान,
मैं जो बुद्धि हूँ।
हाँ बुद्धि हूँ, बुद्धि यहाँ बुद्धि बोल रहा है। बुद्धि परमेश्वर का एक गुण है, चार गुण है, लेकिन परमेश्वर के गुण का कोई शुरुआत नहीं है। लेकिन ये बुद्धि बोलता है मैंने मेरा उत्पन्न हुआ, मेरा शुरुआत हुआ, और परमेश्वर का कोई गुण बुद्धि गुण का शुरुआत नहीं है। तो ये जो बुद्धि जिनका शुरुआत हुआ, जो परमेश्वर का स्वभाव गुण हम नहीं कह सकते हैं, ये बुद्धि कौन है? ये बुद्धि के बारे में और बुद्धि के पहचान के बारे में हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 1:30 1 Corinthians 1:30 क्योंकि ये बुद्धि के बारे में हम सोचते हैं कि ये परमेश्वर का गुण तो नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का गुण का शुरुआत नहीं, कोई भी गुण का शुरुआत नहीं हुआ, परमेश्वर का शुरुआत ही नहीं हुआ। तो ये गुण जो बुद्धि कहता है और कहता मेरा उत्पन्न हुआ, कौन सा बुद्धि है ये? और इसके बारे में जानने के लिए हम पढ़ेंगे 1 Corinthians 1:30
परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा।
हाँ, परमेश्वर की ओर से हमारे लिए बुद्धि ज्ञान ठहरा, मतलब परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का बुद्धि का रूप है प्रभु यीशु। He is the personification of God's wisdom. तो परमेश्वर के ज्ञान और परमेश्वर के बुद्धि का रूप है, शारीरिक रूप है प्रभु यीशु। और उसके शुरुआत हुआ और वो परमेश्वर का पहलौटा था और परमेश्वर उनके जरिए से सारे सृष्टि रचाया। ये जो कारीगर बोला ना, मैं तो उनके साथ कारीगर था, ये सारे बात से हम मालूम होता है कि परमेश्वर कितने खास तरीके से प्रभु यीशु को रचाया, कितने खास मकसद प्रभु यीशु को दिया है, कितने खास काम प्रभु यीशु को दिया है, जिनसे पिता परमेश्वर का सारा योजना प्रकट हो रहा है, जिनसे पिता परमेश्वर का सारा दिमाग, जो परमेश्वर जो अपने दिमाग में सोचा, वो सारा काम प्रभु यीशु के जरिए से प्रकट हो रहा है। मैं बुद्धि हूं बोल रहा है, बुद्धि ये ज्ञान प्रभु यीशु के बारे में, क्या लोगों को जानते हैं आज? ये बुजुर्ग भी बैठा हुआ है, ये बुद्धि बहुत बहुत आश्चर्यमन बुजुर्ग है। परमेश्वर का इकलौता पुत्र, परमेश्वर के साथ कारीगर, मतलब परमेश्वर का को क्रिएटर, जो सारे चीज उनके जरिए से उत्पन्न हुआ, लेकिन वो खुद एक सृष्टि है। यार तुम क्या बोल रहे हैं? हाँ वही वचन बोल रहा है ना, वो सारे सृष्टि की उनके जरिए से सृष्टि हुआ, लेकिन वो खुद ही सृष्टि है, वो खुद ही सृष्टि है। ये है वो बुद्धि, ये है वो रहस्य जो आज सारे दुनिया से गुप्त है और सारे मसीहों से भी गुप्त है। लेकिन परमेश्वर की कृपा, इसलिए कि बड़े काम के लिए परमेश्वर अभी हमारे को चुन रहा है, जो स्वर्ग के लिए चुन रहा है, तो स्वर्ग के रहस्यों हमारे कान में बता रहा है। क्या हम अपनाएंगे? क्या हम विश्वास करेंगे? क्या रोशनी हमारे हाथ में पकड़ेंगे? इस रोशनी के कारण से चाहे हमारा नाम चले जाए, इस रोशनी के कारण से चाहे हमारा काम चले जाए, इस रोशनी के कारण से चाहे हमारा जान भी चले जाए, क्या हम तैयार हैं? यही है वो परीक्षा जो होते जा रहा है, प्रभु यीशु को शर्म नहीं हुआ इस सच्चाई के, अपने यहूदियों के बीच में करके एक भी नहीं माना, उसके 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 सारे बातों को अपमान कर रहे थे, लेकिन क्या बदला? जब चेलों के बीच में सच्चाई बता रहा था अपने शरीर और लहू के बारे में, उठ के चला गया। 70 लोग बोला, अरे ये आदमी बोलने बात पे हम नहीं मान सकते यार। तो प्रभु ने बोला, अरे अरे जाओ, मैं बदली करूंगा, तुम बैठ लो ना। क्या वो 11-12 को भी देख के बोला, तुम भी निकल के जा रहा,
क्या तुम बीच के साथ ही क्यों
जा? पता बोला, कहां जाओ,
नहीं
कहां जाओ, आपको छोड़ के ये सच्चाई, ये शक्ति कहां है?
जीवन के वचन, तो
जीवन का वचन आप है। तो उन लोगों को भी तलाश कर रहा है परमेश्वर, जो जीवन के वचन के लिए अपना जीवन दे सकता है और उस वचन को पालन कर सकता है और अधीन रह सकता है, जिनके वजह से प्रभु यीशु के जैसे दुनिया सभी को देख के दुनिया उन लोगों को मान के उनके बातों को सुन लेंगे। और दुनिया में जब परमेश्वर के राज्य स्थापित हो जाएगा, जब सुधार सब में अंदर हो जाएगा, उनके बातों को मानेंगे, उनके बातों से सुनेंगे और दुनिया का पूरा सुधार हो जाएगा। यही बात तो हो रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बुजुर्ग भी बैठा हुआ है प्रभु यीशु का सच्चाई, प्रभु यीशु का सच्चाई। आठवां बुजुर्ग, आठ भविष्यवाणी परमेश्वर के शब्दों प्रकट हुआ, भविष्यता यशाया के मुंह से प्रकट हुआ बातें, यशाया 35वां अध्याय 8-10 वचन।
और वह एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका ना पवित्र मार्ग होगा, कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा और उस मार्ग पर जो चलेगा वह चाहे मूर्ख भी हो तो भी वह ना भटकेगा, वह सिंह सा ना हो और ना कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा और ना वहां पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उसके नित चलेंगे। और पिता परमेश्वर ने छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा, वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा।
तो ये वचन बताता है वो एक आश्चर्य सच्चाई, एक तीसरा मार्ग के बारे में। तीसरा मार्ग हमारा प्रभु यीशु के मुंह से हमने सुन लिया, दो मार्ग के बारे में, सकेत मार्ग, चौड़ा मार्ग, लेकिन एक तीसरा मार्ग जो प्रभु यीशु भी नहीं बोला। और ये तीसरा मार्ग किसके लिए है? प्रभु के छुड़ाए हुए लोगों के लिए है, जो लौट के आएंगे, जो लौट के आएंगे। तो ये सच्चाई परमेश्वर हमारे को बताता है कि परमेश्वर अभी सचमुच हमारे लिए एक उदार तो रखा है। यह एक आश्चर्य उदार है जो मसीह के लिए और जो कलीसिया के लिए रखा है, लेकिन साथ साथ में ये सच्चाई भी हम याद में रखना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन बताता है कि सिर्फ हमारा हमारा उदार नहीं है, सिर्फ हमारा उदार नहीं है, और हमारा उदार कोई संख्या में बड़े उदार तो नहीं है, संख्या में बहुत छोटे संख्या में है, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या में जो उद्धार होने वाला है वो सारा दुनिया को होना है, वो परमेश्वर अपने योजना में रखा है एक स्थान और एक समय। और उस बात के बारे में वचन बताता है ये तीसरा मार्ग है, पवित्रता का मार्ग उसको उसका नाम माना जाएगा। ये मार्ग के बारे में, और ये दूसरा, शायद हम वो शब्द इस्तेमाल कर सकता, दूसरा उद्धार लोगों को पसंद नहीं करता, बहुत सारे मसीह को इसको पसंद, क्या दूसरा उद्धार बोल रहा है? कहां है दूसरा उद्धार? मैं बताता हूं, ये दूसरा उद्धार है, परमेश्वर दूसरे बार उद्धार का मौका देंगे। ये वचन पढ़ लेंगे यशाया 11वां अध्याय वचन 10-11, यशाया 11वां अध्याय वचन 10-11।
उस समय ईशे के जड़ देश देश के लोग,
उस समय, इस समय नहीं, उस समय जब परमेश्वर के योजना में वो समय आएगा जब परमेश्वर का राज्य हो जाता है। पढ़ लो।
उन्हें ईशे की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। उस सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर
अपने हाथ कितने बार बढ़ाएंगे?
दूसरी बार
बढ़ा के पढ़ लो।
उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुए को जो उसकी प्रजा के रह गए हैं।
देखिए, बचे हुए का मतलब कभी सोच लो। बचे हुए का मतलब हमेशा हम कम सोचता है। ब्रदर जी, अगर कोई समोसा हम खाते हैं, कितने भैया समोसा? 10 रुपया। हम जेब से कितने लेते हैं? 100 रुपया डालते हैं और बचे हुए वापस देते हैं। बचे हुए कितना है? 90 रुपया। कम है से ज्यादा वो है। तो यही भी ये बचे हुए का मतलब ये नहीं है कि छोटे संख्या, ये बड़े संख्या है। कलीसिया को उठा के बाकी क्या?
90
नब्बे नहीं, 95 शायद, ना 95 नहीं, 99 शायद। पढ़ लो।
उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुए को जो उसकी प्रजा के रह गए हैं अशूर से, मिस्र से, पारोस से, कुश से, इलाम से, शिनार से, हमात से और समुद्र के द्वीपों से मेल ले उड़ाएगा।
तो ये सब चिन्ह के भाषा है। अशूर है वो पुरानियों, और मिस्र है दुनिया, ऐसा 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 सारा चिन्ह के भाषा में बोला गया है वो सारे बातें। तो ये है परमेश्वर सारा दुनिया के लिए एक उद्धार भी रखा है, जो तीसरा मार्ग है, जो पवित्रता का मार्ग माना जाएगा। तो ये भी एक बड़ा सच्चाई है। ये आठवां बुजुर्ग, आठवां भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने यशायाह के मुंह से प्रकट किया, बुजुर्ग नवा भविष्यवाणी जो परमेश्वर यिर्मयाह भविष्यवक्ता के मुंह से प्रकट किया, यिर्मयाह के किताब यिर्मयाह 31वां वचन 29 और 30। यिर्मयाह के किताब 31वां अध्याय वचन 29 और 30।
उन दिनों में वे फिर ना कहेंगे कि पुरखा लोगों ने तो जंगली दाख खाई, परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए हैं, क्योंकि जो कोई जंगली दाख खाए उसी के दांत खट्टे हो जाएंगे और हर एक मनुष्य अपने अधर्म के कारण मरा जाएगा।
ये भी एक बहुत बड़ा सच्चाई है। ये बहुत बड़ा सच्चाई है जो यहाँ दिया गया है। यहाँ बोल दिया जाता है उन दिनों में, मतलब उस आने वाले दिनों में परमेश्वर के राज्य में जब न्याय होगा, जब फैसला लिया जाएगा, उस समय नहीं बोलेगा कि हमारे बाप दादों ने जंगली डाक काटा और अपने दांत खट्टे हुए, लेकिन वहां क्या बोलेंगे कि मैंने जंगली डाक खाया और मैंने मेरा दांत खट्टे हुआ। इसका मतलब है वो चिन्ह के भाषा में परमेश्वर यहाँ बता रहा है, जंगली दांत का मतलब है पाप और दांत को कट्टा होना पाप का नतीजा। पाप का नतीजा क्या है? मौत, मृत्यु। तो अभी हम क्या बोलते हैं, हमारा बाप आदम ने पाप किया और आदम के पाप के कारण से आदम मरा, और ना सिर्फ आदम मरा बाकी सारे खानदान मरा, मौत फैला सबके ऊपर। लेकिन एक ऐसा समय आने वाला है कि ये स्थिति ऐसा नहीं रहेगी। एक एक निर्णय करना है कि क्या मैं पाप करूंगा या छोड़ूंगा। जो पाप जानबूझ को करता है खुद उस पाप का नतीजे से मरेंगे, क्योंकि हमेशा पाप का मजदूर है मौत। तो ये बड़ा सच्चाई यहाँ दिया गया परमेश्वर के कृपा से, हम यहाँ यिर्मयाह के मुंह से पढ़ता है। इसका मतलब है दो मौका है जीने के लिए। एक मौके में बाप के अनुभव को एहसास करने के लिए, और दूसरे मौका है ये उस एहसास के बाद अभी हम अपने निर्णय करना है कि हम अभी इन सब जीवन जीने के बाद, इन सब अनुभव पाने के बाद अभी मैं कैसे जीऊंगा ये नए मौके में, दो मौका। तो ये तो यहाँ हम बोलते हैं आजकल बहुत सारे जगहों में लोगों तो बिना जान के बड़ा बड़ा बोर्डिंग बिल बोर्ड में बोलता है यू ओनली लिव वन एंजॉय। मैं तो सोचता है कभी देख के उसको बदलना है, यू आर गोइंग टू लिव ट्वाइस बी वेयर, ऐसा आना चाहिए यू आर गोइंग टू लिव ट्वाइस। तो ये है परमेश्वर का योजना है। हाँ जरूर अभी एंजॉय करता है, लेकिन एंजॉय का भी दाम है, सभी मुफ्त में नहीं आता है, हर एक काम का दाम चुकाना है, हर एक बात का दाम चुकाना है, हर एक कर्म का दाम चुकाना है। जरूर जरूर सब उद्देश्य है आखिरी वचन। ये सब लोग हम बेटो सब सोचते हैं कि हम कुछ भी करें, करो कुछ भी करो, तुम कोई पकड़ने वाला नहीं है, लेकिन भाई मेरे बहन इसके लिए तुम हिसाब देना है, इसका हिसाब देना है, तुम निर्णय करो उस दिन में। तो ये बात परमेश्वर ने हमको स्वतंत्रता दिया है, इसलिए जब हम लोग हंसते भी हम होशियार रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पूछेगा तुम क्यों हंस रहे। थोड़ा हमको डर आना चाहिए, क्योंकि डर जब हम सर्ग में होता है डर होता ही नहीं है, जब गलत मार्ग में जाता है तब हम होशियार होना चाहिए। तो ये परमेश्वर हमारे को मौका दे रहा है ये सब समझने के लिए। तो ऐसे ऐसा निर्णय होने वाला है, बहुत सारे लोग आजकल सोचते परमेश्वर नहीं है और न्याय भी नहीं है, लेकिन एक दिन हो जाएगा जब स्थापित हो जाएगा, जैसा जैसा सूर्य, आज कोई आप अभी कोई बोल सकता है कि अभी सूर्य नहीं है, कोई बोल सकता है, पागल ही बोलेगा ऐसा। तो उसी तरीके से एक दिन आएगा कि सारे के सारे लोग मालूम हो जाएगा एक परमेश्वर है और नीति है और न्याय है, वचन ही बोलता है ना, भजन संहिता में बहुत सारे वचन ऐसा बोलता है। तो ये वचन कहता है कि एक समय आने वाला है जब लोग नहीं कहेंगे कि हमारा बाप दादा ने जंगली डाक खाया और उनके दांतों को खट्टा हुआ, लेकिन उस समय बोलेगा कि मैंने ही जंगली डाक खाया और मेरा दांत ही खट्टा हो गया है। दसवां भविष्यवाणी, दसवां बुजुर्ग मिलेंगे जो भविष्यता एहेजकेल के मुंह से प्रकट हुआ भविष्यवाणी परमेश्वर के शब्दों, एहेजकेल 21वां अध्याय 26-27।
तेरे विषय में परमेश्वर पिता परमेश्वर यों कहता है, पगड़ी उतार और मुकुट भी उतार दे, वह ज्यों का त्यों नहीं रहने का, जो नीचा है उसे ऊंचा कर और जो ऊंचा है उसे नीचा कर, मैं इसको उलट दूंगा और उलट पुलट कर दूंगा, हाँ उलट दूंगा, और जब तक उसका अधिकारी ना आए तब तक वह उल्टा हुआ रहेगा, तब मैं उसे दे दूंगा।
तो ये एक वचन है जो परमेश्वर का था जब परमेश्वर ने इसराइल मतलब यहूदिया का आखिरी राजा के समय में, जेदेकिया के नाम के राजा के समय में जब परमेश्वर ने निर्णय लिया बस आइंदा ये अधिकार नहीं चलेगा, जब तक अधिकारी ना आ जाए, मतलब सही अधिकारी ना आ जाए, इसका मतलब क्या है कि समय परमेश्वर ने क्या किया कि इसराइल के बीच में परमेश्वर ने एक परमेश्वर के अधिकार स्थापित किया जो सिर्फ एक नमूना के रूप में थे, नमूना जो टिपिकल था, और ये नमूना के रूप के राज्य भी चलते चलते इन लोगों भी और भी बेकार कर दिया, तो परमेश्वर उसको रुकवाना पड़ा। तो जेदेकिया का नाम का वो आखिरी राजा जो यहूदिया का राजा था, उनका अधिकार परमेश्वर ने रुकवाया इन शब्दों को बोल के, तो तीन बार में उलट लेंगे, उल्टेंगे उल्टेंगे उल्टेंगे, तीन बार उलट लेंगे जब तक अधिकारी ना आ जाए, मतलब इंग्लिश में टू हिम हुज राइट इट इज अंग्रेजी में आता है, मतलब सही जो परमेश्वर के अधिकार चलाने वाला वो है प्रभु यीशु, ना आ जाए का मतलब है दूसरे आगमन, सेकेंड कमिंग। तो प्रभु यीशु जो दूसरा आगमन में आ जाता है उस वक्त यीशु को मिलेगा वो अधिकार। ये सारे इसराइल के राजाओं परमेश्वर के राजगद्दी में बैठवाता, वचन पढ़ लेंगे ये दूसरा नहीं हाँ पहला क्रॉनिकल्स, क्रॉनिकल्स को क्या इतिहास, पहला इतिहास 29 और 23 फर्स्ट क्रॉनिकल्स 29:23
तब सुलेमान अपने पिता दाऊद के स्थान पर राजा होकर पिता परमेश्वर के सिंहासन पर विराजने लगा।
बाप, पिता परमेश्वर के सिंहासन पर विराजमान करने लगा। ठीक हो, पिता परमेश्वर के सिंहासन पर, तो ये एक नमूना राज्य था, नमूना राज्य था थोड़ा समय इसराइल में। और इस नमूना राज्य के खत्मी के बारे में ये वचन बता रहा है, और ये भी बता रहा है कि ये अभी हमें खत्म कर रहा हूं, मैं उलटूंगा, उलट लेंगे तीन बार, लेकिन वो जिसका वो अधिकारी जिनको मैं अधिकार देने वाला, जब तक वो ना आ जाए ये मैं उलट लेंगे। तीन बार उलटता है, ओवरटर्न, इसका मतलब अभी नहीं बाद में। जैसा मैंने बोला बहुत सारी बातें इसके अंदर है, अभी हम उसके अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ परिचय।
यर्मिया भाई की 29 में भी लिखा पृथ्वी है पृथ्वी पृथ्वी, वो भी तीन बार
ऐसा है ना। ओके ओके बताओ बाद में।
पृथ्वी पृथ्वी,
ओके,
ये भी तीन बार।
कौन से वचन है
ये?
22 का 29 यर्मिया में लिख लो 22:29। तो ये
भी तीन बार।
ओके 22:29। तो ये दसवां बुजुर्ग, दसवां भविष्यवाणी हमारे को दिखाता है कि परमेश्वर का योजना क्या है अपने राज्य के बारे में। जो पहला इज़राइल में एक नमूना के रूप में एक राज्य स्थापित किया, लेकिन नमूना के रूप के राज्य को खत्म होने के बाद भविष्यवाणी में बताया कि अपने असली अधिकारी आएगा और उसके हाथ में दे देंगे। वो अधिकारी है प्रभु यीशु, और आने का मतलब है दूसरे आगमन। 11वां बुजुर्ग, 11वां भविष्यवाणी के शब्द अभी हम पढ़ लेंगे। ये ऐसा शब्द है जो ज्यादा आज हम नहीं बता सकते हैं, ये बहुत ही ऐसे शब्द जो मैं बताऊंगा, दानियल के मुंह से निकला हुआ परमेश्वर का भविष्यवाणी शब्द। दानियल 12वां अध्याय 12वां वचन।
क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे।
हाँ, ये भविष्यवाणी, ये बुजुर्ग बहुत भारी बुजुर्ग है, बताता है कोई समय, कोई साल 1335 दिन के बाद जो पहुंचता है वो धन्य है। ये मतलब क्या है? इसका मतलब हम जानते हैं, लेकिन ये सच्चाई की बात भी हम एक सिद्धांत याद में रखना है। बिल्कुल। यूहन्ना 16:12।
मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते।
हम सोचना है कभी कभी दूसरों से भी हम बात करते वक्त कि कब सह सकता है। जैसे आपने बोला ना कल का वो जो घटना जो पास आया और नींद भी नहीं आया होगा, क्योंकि सहने का शक्ति होना चाहिए। जब नहीं सह पाए तो हम बोलने की क्या फायदा। जब प्रभु कड़ रहा था पिलात के सामने और बोला मैं सच्चाई के कारण के लिए मैं आया हुआ है, और पिलात बोल रहा ये सच्चा चीज है तो बैठो मैं बताता हूँ, और उत्पत्ति से शुरू होकर सारे बता देते, तो क्या पिलात को कुछ समझ लेते? कुछ फायदा नहीं है। इसलिए प्रभु ने क्या किया, ऐसे ही खामोश खड़ा पिलात के सामने। तो उसी तरीके से हम भी जानना है कि कब और कितना हम सच्चाई बताना है। तो ये हम जरूर ये इस बुजुर्ग से आपको मिलेंगे।
बच्चों को दूध दो, अन्न ना दो।
जी, बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही भारी बुजुर्ग है जो हम ये भी बोलता हूँ, ये बताता है प्रभु के दूसरे आगमन का डेट, ये भी बताता हूँ, ये प्रभु के दूसरे आगमन का डेट का बताने हुए वचन है, बस उतना ही बताता हूँ। ये तो हम उचित समय में ये वचन हम इसका ज्ञान हम देख लेंगे और इस बुजुर्ग को मिलेंगे। बारवां बुजुर्ग, बारवां सच्चाई जो परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी का शब्दों होसैया भविष्यता के जरिए से, होसैया भविष्यता के मुंह से प्रकट किया, होशिया 7:8-11।
जी, प्रेम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है। प्रेम ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी ना गई हो। अप्रेम एक भोली पंडुक्की के समान हो गया है, जिसके कुछ बुद्धि नहीं। वह मिस्रियों को दोहाई देता और अशूर को चले जाते हैं।
तो ये है बारवां बीचा बुजुर्ग, और ये बारवां बुजुर्ग बोलता है एफ्रायम के बारे में। हम अच्छी तरह जानते हैं एफ्रायम तो योसेफ बेटा था, तो ये उस बेटा के बारे में जरूर नहीं हो सकता, हम जानते हैं। तो ये यहाँ एफ्रायम एक छिन्न हो गया है, एक 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 आदमी के बारे में नहीं है, एक झुंड के बारे में, क्योंकि बोलता है एफ्रायम लोगों के बीच में मिलते जुलते हैं। इसका मतलब एफ्रायम एक नहीं, एफ्रायम में अनेक झुंड है। एफ्रायम तो या अयूब सॉरी योसा बेटा है, वो वचन आप मैं बताता हूँ, पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो है उत्पत्ति 48:13-14, लेकिन वो अभी हम पढ़ने की जरूरत, आपको जानते हैं। तो योसेफ का दो बेटे, एक तो एफ्रायम और एक तो मनासे। हम चिन्ह के तौर से आपको याद होगा, जब आप कलीसिया का सच्चाई सुन रहे थे और पढ़ रहे, और जब 144,000 का 12 जून के बारे में आप पढ़ रहे थे प्रकाशित वाक्य में, वहां 7 अध्याय में हरेक कुल हम बराबर दिया है इसराइल का, लेकिन मनासे उधर आता है। वहां हटा दिया गया है एक दान तो हटा दिया गया, और दान के जगह में आ गया मनासे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं है इतिहास में। तो इसका मतलब ब्रदर ने आपको समझाया होगा कि ये इसका मतलब है चिन्ह का द्वारा समझना है। ये 12 नाम जो है, ये 12 इसराइल के बेटे नहीं है, ये 12 चेले का एक बाले का एक चिन्ह है, और 12 चेले में से एक चेला गिरा डैन, और डैन की जगह किसने लिया, मनासे। मनासे का मतलब क्या है कि इन 12 पहला नहीं था, बाद में था, जैसा योसेफ था ना पहला 12 में, लेकिन योसेफ यहाँ नहीं,
योसेफ जो 11वां था वो पहले आ गया।
एग्जैक्टली। तो अभी योसेफ का बेटा मनासे इधर जगह लिया, उसी तरीके से हमने देखा 12 चेले में से यूदास इस्कारियोट गिरा, और यूदास इस्कारियोट के जगह लिया है पौलुस, जो पौल का नाम का जाना माना था, और उसके बाद पौलुस का नाम से, और सबसे बड़ा और सबसे खास चेला बन गया। तो मनासे का चिन्ह के तौर से कहाँ जुड़ा गया है, छोटे झुंड एफ्रायम बड़ा समूह, क्योंकि दोनों भाई हैं, योसेफ का दोनों भाई हैं, एक तो छोटा झुंड, तो दूसरा होना चाहिए बड़ा समूह, द ग्रेट कंपनी। तो यहाँ ये भी बोला गया है, उसको बुद्ध भी नहीं, मूर्ख है। ये तो द ग्रेट कंपनी का एक चिन्ह है, वो नहीं उल्टी किया गया चपाती है, मतलब उसके उत्पन्न पूरा नहीं हो गया,
आधी कच्ची।
ब्रदर करेक्ट बताया, आधा तो हो गया, लेकिन आधा से काम नहीं हो रहा है ना, आधा बढ़िया है, लेकिन और भी आधा चाहिए ना, तक पूरा आधार नहीं आता है काम का, काम भी नहीं हो सकता, फायदा भी नहीं हो सकता है। तो जैसा हम देखते हैं, इसका मतलब इमैच्योरिटी, मतलब पूरे तरीके से पक्के नहीं, पक्के नहीं, पूरे तरीके से समझदारी नहीं है, मतलब अपने आत्मिक बढ़ोतरी पूरे तरीके से नहीं हुआ। तो ये है दो वर्ड्स, केक नॉट टर्न्ड, मतलब चपाती जो उल्टी नहीं किया गया था, और एक मूर्ख कबूतर, एक सिली डव, कबूतर है लेकिन मूर्ख कबूतर। कबूतर का मतलब है कुंवारी, कुंवारी का मतलब है शुद्ध वचन पर विश्वास करता है, पवित्र वचन से, वचन क्या है, पवित्र वचन से विश्वास करता है और धार्मिकता हो गया है, धारा पाया है, इसलिए कुंवारी है। लेकिन ये बुद्धिशाली कुंवारी नहीं है, ये मूर्ख कुंवारी है। तो ये दिया गया है, ये है मूर्ख कबूतर। और इस झुंड के बारे में वचन में उसी होशेया में 13वां अध्याय और 13वां वचन में ये पढ़ते हैं, पढ़ लो। होशेया 13:13,
उसको जच्चा सी पीड़ें उठेंगी, परंतु वह निर्भी लड़का है जो जन्म लेने से देर करता है।
देखो, वो मेरा लड़का है लेकिन निर्बुद्धि लड़का है, इतना ज्ञान दिया उसको नहीं अपनाया, निर्बुद्धि लड़का है, उसको थोड़ा दर्द लगेगा, सही मौके पे जन्म नहीं लेता है। अभी ये इस झुंड के बारे में वचन बोलता है कि वो बहुत सारी बातें बोल रहा है उधर, होशिया 7:8-11, लोगों के बीच में मिले हुए है, इसके मतलब है आत्मिक भी है दुनिया भी है, दोनों मिक्सिंग करता है, कॉकटेल में हमेशा नशा हो जाता है, क्योंकि कॉकटेल तो ऐसा चीज है जो अपना अपना दिमाग को खराब करते हैं। तो ये एक तरफ आत्मिक बात, एक तरफ दुनिया की बात, जब ये करता है आगे नहीं बढ़ सकता है। अगले कहता है कि वो चपाती जो उल्टी नहीं, चपाती का मतलब भी बहुत गया, हम सब गेहूं कहता है, गेहूं एक एक गेहूं का दाना, लेकिन गेहूं के दाना रहते हुए हम काम का चीज नहीं है, इस गेहूं का दाना को पीस के आटा बनना है, आटा बनना है, इसका मतलब है हमारा जिंदगी में ऐसा अनुभव पाना है जहां हम मुलायम और हम नर्मता से बदले, और उसके बाद इस आटे में पानी और भी मिलाना है। तो इस नर्मता और मुलायम स्थिति में जब हम पहुंच जाता है और भी सच्चाई पाके, हम परमेश्वर के इच्छा को पूरी तरह से समझ लेना है, और उसके बाद उसको, उस आटे को पीस के उसको एक रूप देता है। रूप देने का मतलब क्या है कि हम कौन से जगह और कौन सा स्थान होगा उस मंदिर में, इस पत्थर, हर एक पत्थर अपने अपने जगह में डालेगा ना, तो उसको रूप देंगे, और रूप देने के बाद कहां डालना है, डालना है आग में पकने के लिए। तो आग पकने का मतलब क्या, हमको ऐसा विरुद्ध वाला अनुभव आना है जहां हम दिखा जाए कि हम सचमुच धार्मिकता में कर रहे हैं और हम बुराई को नफरत कर रहे हैं, और हम धार्मिकता के लिए हम अपने जान भी दे सकते हैं, हम पिता परमेश्वर के इच्छा के लिए और पिता परमेश्वर के योजना के लिए हमारा जान तक देने के लिए भी तैयार है। तो इसको आग, इसको पकने की बहुत जरूरी है, ताकि हम इसमें 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 हम क्या बताऊं, जब तक चपाती देखो अच्छा है, इतने सब तैयार है, लेकिन जब तक चपाती आग में नहीं डालते हैं, वो बदली नहीं आता जो खा सकता है। कच्चा चपाती खा सकता है कोई, मुंह में डाले तो थूकेगा, क्या ही चपाती बनाया, लेकिन वो जब आग में डालता है ना, कुछ बदलता है, पता नहीं कुछ बदलता है, खाने का सामान बन जाता है। ये आप जान लेंगे कि ये सब क्या मतलब है, बहुत बहुत गहरी बात है ये सब हमारे बीच में जो परमेश्वर काम कर रहा है। इसलिए पौलुस हमेशा कहता है आप रिजॉइस, अगेन आई से अनटू यू, हम इतना मुश्किल और तकलीफ में कैसे भैया। ये है रहस्य, ये रहस्य, ये आग आग हमको तैयार कर रहा है, तैयार कर रहा है। तो ये बात तो यहाँ दिया गया है। और अगले यहाँ भी बोल दिया, इसको पुकारता है असुर और जाता है मिस्र। असुर का मतलब क्या है? असुर जैसा आपने चार नदी आपने पढ़ लिया, असुर का मतलब तीन नदी, सॉरी तीसरा नदी जो हिदिकल असुर के रास्ते में जाता है ना, तो वो तीसरा नदी का मतलब है पुरानियों, परमेश्वर के बुजुर्गों, तो वो परमेश्वर के भक्तों। असुर का मतलब है वो लोग, लेकिन यहाँ तो वो लोग नहीं रह सकता क्योंकि ये दूसरा जमाना है। अभी इस जमाने में असुर का मतलब क्या है? अभी भी परमेश्वर के लोगों भी है, असुर का मतलब परमेश्वर के लोगों। तो ये लोग क्या करता है? परमेश्वर के लोग के साथ भी संगति रखते हैं
और दूसरे लोग
और मिस्र दुनिया दुनिया के साथ भी संगति दोस्ती रखता है। तो दोनों रखने के कारण से उसके काम पूरा नहीं हो सकता है। हम जरूर दुनिया के बीच में होना है, हम ये नहीं बोलते कि दुनिया से भागो, लेकिन हमारा कीमती समय, हमारा दिमाग, हमारा दिल, हमारा चाहत उनके साथ नहीं रखना है, बस उतना ही कह रहा है। तो इस मामले में हम दिखाना है कि नहीं, हम इसमें तो नहीं है, हम अलग है, हम अलग है, हम अलग है, तो उसमें हमारा बढ़ोतरी हो जाएगा। तो ये सारे बहुत सारी बातें इस बुजुर्ग में है, होशिया सातवां अध्याय आठवां और ग्यारहवां वचन। ये बुजुर्ग से ही योहन्ना से बात हुआ, प्रकाशित वाक्य सातवां अध्याय 13 और 14, प्रकाशित वाक्य सातवां अध्याय 13 और 14।
पर इस प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकलकर आए, इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं।
आपको याद होगा वो दृष्टि पांचवा अध्याय बढ़िया दृष्टि प्रकाशित वाक्य में सिंहासन के बैठा हुआ पिता परमेश्वर के हाथ में एक किताब है, सात मोहर बंद हुआ किताब है, लेने के लिए कोई काबिल नहीं है। योहाना देखता है, रोता है, लेकिन एक बुजुर्ग आके उनके पीछे पीठ पे हाथ लगा के बोलता है, मुड़ के देखो, मुड़ के देखो, मत रो, मुड़ के देखो। देखो तो एक ऐसा दृश्य आता है सिंहासन के बीच में, 24 बुजुर्गों के बीच में, चार जंतुओं के बीच में एक एक मेमना का बच्चा। और ये मेमना का बच्चा कैसा है? उसकी गर्दन काटा हुआ है फिर भी जोड़ा हुआ है। काटा हुआ फिर भी जोड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु के मही हुए स्थिति, मामस में आया, चुड़ौती दिया, मर गया, जी उठा, अभी महिमा होके सिंहासन के बीच में बैठा हुआ है। ये दृश्य देख रहा है और मालूम हो रहा है कि इसको काबिल है, क्योंकि वो आता है लेते है। इसका मतलब सिंपल, परमेश्वर का योजना का एग्जीक्यूटर कौन है? परमेश्वर का योजना का सेवा, पवित्र सेवा कौन कर सकता है, कौन काबिल है? क्योंकि परमेश्वर का घर में परमेश्वर के काम का सेवक होना चाहिए, हिमा वाले सेवक, इसके लिए कौन काबिल है? और आता है वो मेमना का बच्चा प्रभु यीशु। चलो वो अलग सब्जेक्ट है, हम उसके अंदर थोड़ा दृश्य नक्शा दिया है आपके लिए। अब जानते हैं आपके अंदर बहुत खुशी होगा क्योंकि आपके अंदर वो आत्मा है, ट्रेलर दिया है। लेकिन हमारा बात क्या है इसके इसमें कि ये एक बुजुर्ग आके योहाना से बात करता है। तो ये कौन से बुजुर्ग है? ये बुजुर्ग है, बारहवां बुजुर्ग जो होशिया से बात किया है, ये बताता है इन समूह के बारे में। कौन है ये लोग? मैं बताता हूँ, क्योंकि ये बुजुर्ग ये भविष्यवाणी बड़ा है बड़ा समूह के बारे में। बड़ा समूह ये झुंड है, ये ऐसा हुआ, ऐसा किया, ऐसा करके पहुंच जाएगा। तो यही बात तो यहाँ तो बारहवां बुजुर्ग से हम मिला, अभी तेरहवां बुजुर्ग को पहुंच लेंगे। तेरहवां बुजुर्ग, तेरहवां भविष्यवाणी परमेश्वर के बातों, परमेश्वर के वचन जो भविष्यवक्ता योएल के मुंह से प्रकट हुआ, 2:28 योएल 2:28
मैं उन बातों को बाद में सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा, तुम्हें बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारा जवान दर्शन देखेगा।
तो ये वचन बोलता है, बताता है कि दोबारा पढ़ेंगे वचन, क्योंकि इसमें एक एक शब्द को बहुत 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 खूब है।
उन बातों को बाद में सब प्राणियों
पर, बातों बाद में बाद में, तो उन बातों के बाद में सब प्राणियों के ऊपर मैं अपना आत्मा उड़ेल करूंगा। इसका मतलब है दो बार परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा उड़ेल करेंगे, एक बार और उसके बाद, एक बार और उसके बाद। तो एक बार हम जानते हैं अभी, मतलब सुसमाचार के युग में, जो हम पढ़ता है 29वां वचन,
इसी का प्रसंग,
उसी का,
तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उड़ेलूंगा।
आपको जानता है ना, ये वचन में परमेश्वर कभी कभी क्या करता है, थोड़े बड़े बड़े सच्चाई को छुपाते हैं। छुपाने की तरीका क्या मालूम, ऊपर नीचे कराता है। एक्चुअली 29 ऊपर होना चाहिए और 28 नीचे होना चाहिए,
थोड़ा
ऐसा 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 करता, लॉकिंग सिस्टम है ये। तो उसी तरीके से हम पढ़ता है, पहला 29 आना चाहिए, जहां कलीसिया के बारे में बताता है, जहां बोलता है जब सुसमाचार के युग में परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा उंडेल करेंगे सारे अपने सेवकों के ऊपर और सेविकाओं के ऊपर। बहन जी आपने सुन लिया होगा, सेविकाओं भी इधर है, सिर्फ सेवक नहीं है, तो सेवक भी है और सेविकाओं भी है, औरत भी है, औरत के ऊपर भी पवित्र आत्मा मिलता है और पवित्र आत्मा से बोलते हैं, ये सारे बातें इधर दिया गया है। भविष्यवाणी बोलने का शक्ति, मतलब परमेश्वर के सच्चाई अपने वचन के विवरण करने का शक्ति, ये सिर्फ आत्मा से आता है, बाकी कोई शक्ति से नहीं आता है। कोई बाइबल कॉलेज में जाओ आप कुछ पढ़ नहीं सकते, ये सारे, ये सिर्फ परमेश्वर खुद ही अपने पुत्र के जरिए से, अपने सेवकों के जरिए से सिखाता है। यूहन्ना 6:44 क्या बोलता है, यूहन्ना 6:44
अपने सिखाए हुओं को भेजेगा,
पढ़ लो यूहन्ना 6:44 यूहन्ना 6:44 वचन अंकल पढ़ लीजिए।
कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले।
45
भविष्यवक्ताओं के लेखों में ये लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे।
देखो देखो, यो ये बाइबल कॉलेज वो बाइबल कॉलेज से सिखाए हुए नहीं होंगे, वो खुद ही परमेश्वर से ही ले होंगे। इसका मतलब है परमेश्वर अपने तरीका है, पहला तरीका प्रभु यीशु, क्योंकि पहला प्रभु यीशु को पहचानना है, कौन प्रभु यीशु बराबर 500 पहचानना है, उसके बाद उस प्रभु यीशु के सेवकों के जरिए से ये काम होगा। तो एक एक इन लोगों क्या क्या ये विटनेस देंगे, बोलेगा, साक्षी देगा कि हम खुद परमेश्वर से ही सिखाया, क्योंकि ये सब परमेश्वर का कर्म है। ये कोई एक मनुष्य या एक कोई सिस्टम का काम है। तो ये बात तो देखते हैं कि जैसे वचन पढ़ता है कि दो बार परमेश्वर पवित्र आत्मा देंगे, पवित्र आत्मा के जरिए से ही अपने परमेश्वर के वचन हम समझ सकते हैं और परमेश्वर के योजना से समझ सकते हैं। तो ये बात कि परमेश्वर दो बार अपने आत्मा देंगे, ये पुराना नियम में एक नमूना है, जहां गिदियोन को परमेश्वर उसको ढूंढ के उसको क्या है कि तुम्हारे जरिए से मैं इसराइल का जीत मैं दूंगा। गिदियोन बोलता है मैं कौन, मैं सबसे छोटे झुंड वाला, सबसे छोटे झुंड के सबसे छोटे वाले, मेरे को ढूंढ के क्यों आया, मेरे में क्या है, नहीं तुम्हारे जरिए से मैं करूंगा। चलो तुम बुरा मत समझो, मैं तुम परमेश्वर आपसे एक चिन्ह मांगता हूँ, पहले मैं ये पूछता हूँ, और उसके सही होने के बाद बोलता अभी और भी गुस्सा मत हो जाओ, मैं एक और सबूत, एक और सबूत चाहिए, ये बताओ। तो ये दो सबूत हमें अभी हम पढ़ लेंगे और उन दो सबूतों से हम समझ जाएंगे कि यहाँ परमेश्वर बताता है कि कैसे अपने पवित्र आत्मा दो समय दो युगों में उंडेल करते हैं। वचन पढ़ लेंगे, न्यायों न्यायों का किताब छठा अध्याय 37 से लेकर 40वां वचन तक। न्यायों का किताब छठा अध्याय 37 से लेकर 40वां वचन तक।
तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन,
भेड़ी के
भेड़ी की ऊन
के
की ऊन
ऊन, मैं क्योंकि मैं शब्द समझ नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं
कि
भेड़ी के ऊन मतलब बाल, भेड़ का बाल। ओके पढ़ लो।
खलिहान में रखूंगा और यदि औस केवल उस ऊन पर पड़े तो मैं उसे छोड़कर छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए तो मैं जान लूंगा कि अपने वचन के अनुसार इसराइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा।
पहला 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 चिन्ह क्या है? कल सुबह मैं बेड़ का थोड़ा बाल लेके एक जगह में डालता हूँ और जब होश गिरता है वो होश सिर्फ उस बाल पर गिरना है, आसपास के सारा जमीन सूखा रहना चाहिए। ये एक चमत्कार है, एक चमत्कार है। हर वचन में पढ़ता है ऐसे ही हुआ, मतलब परमेश्वर कर लिया वो चमत्कार। पढ़ लो आगे पढ़ो।
और ऐसा ही
ऐसे ही हुआ। देखो इतना सिंपल वर्ड है, ऐसे ही हुआ, परमेश्वर का शक्ति प्रकट हुआ, ऐसे ही किया। उसके बाद
इसलिए जब उसने बिहान को सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से औस निचोड़ी तब एक कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूँ तो मेरे तो तेरे क्रोध मुझ पर ना भड़के,
गुस्सा मत हो जाए परमेश्वर, मैं तो और सबूत पूछने वाला है। अभी ये सारा उल्टा कर दो। अभी मैंने आपसे क्या बोला कि इस बाल के ऊपर ही होश होना चाहिए, बाकी सभी सूखा रहना। लेकिन अभी मैं आपसे मांगता हूँ कि सिर्फ वो बाल सूखा होना चाहिए, बाकी सब भीगा हुआ होना चाहिए। तो पूछता है और पढ़ लो,
मैं इस ऊन को एक बार फिर और भी तेरी परीक्षा करूँ, केवल अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर औस पड़े।
और
सिक्स्थ ब्रदर चैप्टर था ना?
हाँ वही 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 सेम कंटिन्यूएशन।
इस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी।
देखा इसमें हमारा क्या सबक है? ये क्या कोई चमत्कार की विवरण जो परमेश्वर ने किया गिद्योन के साथ बस ऐसे ही रूप में हम पढ़ना नहीं, इसमें अंदर बहुत सारी बात है। होश का मतलब इसका कुछ चिन्ह है, पवित्र आत्मा का चिन्ह है। भजन संहिता 133:2-3, भजन संहिता 133:2-3, यर्दन के लेक में आपने सुन लिया होगा, यर्दन जी 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 जी, हेरमोन के पहाड़ के ऊपर गिरते हुए होश का मतलब है पवित्र आत्मा के समान है। भजन संहिता 133:2-3,
हारून के जो
हारून ये तो उस उत्तम तीर के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र को की छोर तक पहुँच गया। वह हारून कि उस ओस के है
हार्मोन
वो वे हार्मोन के उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर
बस 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 हार्मोन के ओस के समान है। हारून के सर के ऊपर गिरे हुए वो क्या क्या तेल है? उत्तम तेल। वो उत्तम तेल का समान, इसका मतलब है होश का मतलब है पवित्र आत्मा। और यहाँ परमेश्वर बता रहा है ये दो चिन्ह में पवित्र आत्मा का उंडेल कैसा करेंगे। पहला, पूरा जमीन पर कुछ नहीं सूखा हुआ है, सिर्फ एक थोड़ा सा जो ऊंट का बाल, बेड़ का बाल, बेड़ का बाल के ऊपर ही है, हम देखता है ये जो होश। उसके बाद दूसरे चिन्ह में इधर भी बहुत गहरा है, मैं गहरा में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो इसके बाद हम देखते हैं उस अगले चिन्ह में बेड़ के बाल के ऊपर सूखा है लेकिन बाकी सब भीगा हुआ है। इसका मतलब है परमेश्वर पहला युग में, अभी सुसमाचार के युग में, अपने पवित्र आत्मा उंडेल कर रहे एक छोटे संख्या के लोग के ऊपर, मतलब कलीसिया के बुलाए हुए लोगों के ऊपर। ये लोग ही यहाँ देखता है ये बेड़ का जो बाल है। लेकिन आने वाले युग में परमेश्वर, जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा सारे शरीर पर, सारे मामस पर उंडेल हो जाएगा, सारे मामस पर उंडेल हो जाएगा, उस वक्त हम देखता है कि ये पवित्र आत्मा सारे जमीन पर रहेगा, सिर्फ एक छोटे जगह पे नहीं होगा। जो छोटे जगह है वो मौत जो मरने वाला है ना, उस वक्त वो दूसरे मौका भी मिले तो भी इनकार करेंगे। परमेश्वर मौका देगा, मैं तुमको अपनाएंगे, मैं तेरा मेरा आत्मा तुम्हारे के दे दूंगा, लेकिन आप पहला अपने आप को देख लो, परख लो, बदलो, मन फिराओ। लेकिन ऐसे लोगों होंगे जो नहीं मानेंगे। वचन में पढ़ता है उन लोगों के बारे में, यशाया 26:10। यशाया 26:10।
उस पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को ना सीखेगा। धर्म राजे भी वह कुटिलता करेगा और यहोवा पर
महिमा
उसे सूझ ना पड़ेगा।
देखो दुष्ट होगा, सारे तो दुष्ट है, लेकिन थोड़ा दुष्ट वो ही होगा जो जानबूझ के दुष्ट के रास्ते में जाएंगे, जो सच्चाई और धार्मिकता को अपनाएंगे नहीं, जो परमेश्वर के राज्य के महिमा, सच्चाई के राज्य के महिमा को इनकार करेंगे। ऐसे लोगों को क्या करें, वो जानबूझ के पापी है। हमेशा पर का वचन में पढ़ता है पाप का मजदूरी है मौत, ये दूसरे बार मरेंगे। तो ये लोगों परमेश्वर के पवित्र आत्मा जीवन देते हुए परमेश्वर के पवित्र आत्मा अपनाएंगे नहीं, ले लेंगे नहीं, तो दूसरे मौत मर जाएंगे करके हम पढ़ता है। तो ये देखो, ये एक ऐसा बुजुर्ग है जो बताता है कि दो बार परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के उंडाल करेंगे, क्योंकि दो युग में परमेश्वर काम करेंगे। पहला युग है सुसमाचार के युग, दूसरा युग है 1000 साल का युग। अभी चौदवां बुजुर्ग का वचन हम पढ़ लेंगे
कल करते हैं।
14 खत्म करके खत्म रुकवाएंगे। तो 14वां बुजुर्ग का वचन पढ़ेंगे आमोस की किताब में 9:13। आमोस 9:13।
यहोवा की ये भी वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लड़का लड़के वाले को, एक दाख रौंदने वाला बीज बोने वाले को लेगा, और पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ियों से वह निकलेगा।
तो ये 14वां भविष्यवाणी है, परमेश्वर बता रहा है अपने योजना के बारे में। और इस भविष्यवाणी आमोस भविष्यता के मुंह से निकला, बताता है हल जोतने वाले के बारे में। और हल जोतने के बारे के हिसाब से रीपर क्या दिया है हिंदी में, पहला शुरुआत में पढ़ लो,
यहोवा की ये वाणी
वाला,
देखो कि ऐसे आते हैं कि हल जोतने
वाला,
हाँ रौंदने वाला, रौंदने मतलब रीपर, हल जोतना प्लावर, रौंदने वाला रीपर, करने वाला। तो यहाँ तो हल जोतने का काम के बारे में बता रहा है और दूसरा बता रहा है कटनी के काम के बारे में। तो ये जो कटनी के काम का मतलब है सुसमाचार युग अंत के काम, सुसमाचार के युग के अंत में अभी कटनी का काम हो रहा है, चलते जा रहा है। ये काम अभी चलते आ रहा है कि अंत में सही और असली मसीह हो, असली मसीहों कौन है? मसीह जिनके दिल में है प्रभु यीशु, जिनके दिल है परमेश्वर के वचन, उन लोगों का अभी कटनी हो रहा है। तो ये कटनी के काम यहाँ बता रहा है। और हल जोतना हमेशा काम का शुरुआत, कटनी काम के अंत है। तो इसका मतलब क्या है मालूम? एक काम खत्म हो रहा है, एक और काम शुरू होने वाला है। तो एक काम जब खत्म रहा है, दूसरा काम शुरू होता है। देखो परमेश्वर की रीत और रिवाज क्या है कि एक काम खत्म होने के बाद कोई विश्राम नहीं है। एक काम खत्म हो रहा है, खामोश बैठ रहा है सब लोग, उसके बाद शुरू होता है अगले काम। ऐसा नहीं है, परमेश्वर के काम हमेशा कैसा होता है? एक काम खत्म होने के बाद तुरंत अगले काम शुरू हो जाता है। और वो ना सही वचन बताता है, ये एक काम खत्म होने से पहले, ये एक काम खत्म होने से पहले दूसरे काम शुरू हो रहा है। मतलब अगले काम शुरुआत ये काम के अंत के
दौरान
हो रहा है। तो ये हल जोतने वाला, ये कटने वाला को सामने सामने जा रहा है। मतलब इंग्लिश में ओवरटेक, दे प्लाउमैन शल ओवरटेक द रीपर। तो ओवरटेक का मतलब क्या है? एक का गति कम हो रहा है, एक का गति ज्यादा हो रहा है। बस वही है ना, कब ओवरटेक होता है? गाड़ी में चलते वक्त, कब गोड़ी, जब तुम्हारा गाड़ी तेजी से जाता है तब तुम क्या करता है? वो गाड़ी को ओवरटेक कर रहा है। तो दोनों का काम हो रहा है, एक का काम खत्म ही जा रहा है, स्लो खत्म ही हो रहा है, मंजिल तक पहुंच रहा है, एक का काम शुरू हो रहा है, गति ज्यादा हो रहा है। तो ये है ओवरटेकिंग। तो इसका मतलब दो काम है, दो युग का काम है, एक काम खत्म हो रहा है, दूसरा काम शुरू हो रहा है। ये कटनी का काम, ये हल जोतने का काम क्यों बतलाया गया? क्योंकि परमेश्वर अपने काम जो दुनिया में कर रहा है वो खेती बाड़ी के उदाहरण रख के बता रहा है, खेती बाड़ी का उदाहरण रख के और खेती बाड़ी का जो चिन्ह रख के बता रहा है। क्योंकि एक वचन में हम पढ़ते हैं, ये दुनिया खेत है, दुनिया खेत है, मत्ती 13वां अध्याय 38वां वचन, दुनिया खेत है। पढ़ लीजिए अंकल, 13:38, मत्ती 13:38।
खेत जगत है।
हाँ, खेत जगत है। तो बस, तो इस खेत के अंदर परमेश्वर काम कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है। ये सारा काम, कभी कभी हल जोतना, कभी कभी कटनी करना। तो ये जोतने का मतलब क्या है? हल जोतना आपको जानता है, एक बहुत गट जमीन को तोड़ना है, सख्त जमीन को तोड़ना है। उस सख्त जमीन को तोड़ना है कि ऐसा हथियार लेना है जिसे उसको फाड़ना है, फाड़ के जमीन क्या बन जाता है? मुलायम बन जाता है। मुलायम जमीन में बीज डाले तो कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा। अगर तुम सख्त जमीन में बीज जाके डाला, बीज का वेस्ट हो जाएगा, अंदर जाएगा नहीं। तो ये हल जोतना बहुत जरूरी है। हल जोतने का मतलब है मनुष्य के दिल, परमेश्वर के वचन देने से पहले मनुष्य के दिल में और मनुष्य के अनुभव में थोड़ा मुश्किलात देना है, थोड़ा क्या बोलते हैं, ट्रबल, अंग्रेजी में ट्रबल बोलते हैं, ग्रेट टाइम ऑफ ट्रबल। सारा दुनिया के ऊपर परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा उंडेल करने से पहले, सारे दुनिया को परमेश्वर के वचन देने से पहले, सारे दुनिया के ऊपर परमेश्वर ला रहा है एक ऐसा समय जिसका नाम द ग्रेट टाइम ऑफ ट्रबल, बहुत बड़ा कलेश का समय। मत्ती 24:21,
क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश का जैसे जगत के आरंभ में से आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा।
देखो ऐसे ऐसे कलेश जो इससे पहले नहीं हुआ और परमेश्वर की कृपा से आइंदा से भी ये नहीं होगा, ये आखिरी कलेश है, आखिरी कलेश है।
तैयार करेगा
लोगों का दिल, तैयार करेंगे लोगों को परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, अपनाने के लिए। अगले वचन में बोलता है सब पहाड़ों से मीठे मीठे दाखरस गिरेंगे, है ना, नया नया दाखरस गिरेंगे। इसका मतलब क्या है कि इस समय में जब ये सब हो रहा है, मतलब जब एक युग खत्म हो रहा है, एक नया युग शुरू हो रहा है, इस समय जब ये परमेश्वर के ये काम हो रहा है, इस समय में, इस दौरान में क्या हो रहा है कि पहाड़ों से, पहाड़ों पर गिरेंगे नया दाख रस। रस आपको जानता है ना, वचन में क्या कहता है, वचन में रस का मतलब है शिक्षा या टीचिंग, सच्चाई, सच्चाई कह सकता है ना। तो इस वक्त जब ये सब हो रहा है, वचन कहता है नया नया ज्ञान सच्चाई प्रकट हो जाएगा हर एक विषय पर, जैसे केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, प्राकृति, विज्ञान, हर एक विषय पर नया नया ज्ञान और नया नया सच्चाई प्रकट हो जाएगा सारा पहाड़ों के ऊपर। सारा पहाड़ का मतलब सारे देशों के ऊपर, एक बूंद इधर, एक बूंद उधर। ऐसा नहीं कि सारे के सारे सच्चाई और सारे के सारे बात एक ही देश में प्रकट हो जाएगा, बल्कि अनेक देश के बीच में ये प्रकट हो जाएगा। तो ये 14वां बुजुर्ग को आपको मिला। जैसा मैंने बोला, ये बड़ा सब्जेक्ट है, समय लगता है इसको खत्म करने के लिए, लेकिन परमेश्वर की कृपा से 14 बुजुर्ग को मिला है, बाकी 10 है, और इस सब्जेक्ट का अंत भी है। ब्रदर के कहना है कि ये कल हम वापस आके ये खत्म कर लेंगे, क्योंकि ये इसका हजम भी करना है, ये 14 वाला, और उसके बाद आपको दोबारा आपको बुक आना है, तो जरूर हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम कल मिलेंगे। तब तक परमेश्वर ही आप सभी को आशीर्वाद करें। आमीन।